आज हम इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मेरा भाई बहनों से अनुरोध रहेगा, अगर आप ठीक से एक बीच में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव सेशन जा रहा है तो वीडियो ठीक से आएगी। भाई बहने अगर ज्यादा पीछे हैं तो ठीक इस साइड आ जाइए, या सोफा बीच में खुला नहीं छोड़िए, बैठ जाइए वहां पे। थैंक यू। आप सब खुश हैं? अच्छा लग रहा है? हाथ उठाएंगे? यस। न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपकी स्टार्ट हुई है। अपने आप को चेंज करने के लिए आप सभी अध्यात्म प्रेमी आए हैं, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हम अभी सत्र शुरू करते हैं। आज का एक जो अम्ब्रेला थीम है वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी फॉर इथेरियल प्रोग्रेस, न्याय जगत की अलौकिक प्रगति के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आजकल हम विमेन एम्पावरमेंट बहुत सुनते हैं, इसका एम्पावरमेंट हो रहा है, उनका चाइल्ड एम्पावरमेंट सुन रहे हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट के भी बारे में सुनते हैं, लेकिन वो कैसे किया जाए? केवल बाहर से सशक्त बनने या फाइनेंशियली हम साउंड होने से ही हम सशक्त नहीं बनते हैं, परंतु हमारी आत्मा को हमें सशक्त बनाना है। अंदर से हम सशक्त बनेंगे तो बाहर की कोई भी समस्या हमें समस्या नहीं लगेगी, उसको हम आराम से फेस करेंगे, क्योंकि रहते ऐसे दुनिया में है कि वहां समस्याएं समस्या है। तो हम जुडिशियरी के रिलेटेड जो लोग हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, तो हम तो समस्याओं में ही घिरे रहते हैं। सारे लोग हमारे पास समस्या लेके आते हैं, उनकी समस्याओं में हम भी समस्या युक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेंशन हम ले लेते हैं। जजेस को जजमेंट देने के लिए समस्या है, फाइनेंस वालों को उन लोगों के अकाउंट्स कैसे सेटल करने उसका टेंशन होता है, वकीलों को अपने क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, उनको कैसे जीता के दे उसका टेंशन है, सब टेंशन में होते हैं। और वो जो खुद क्लाइंट आते हैं वो भी टेंशन में ही आते हैं, तो वही माहौल रहता है। तो उस माहौल में रहते रहते हम नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। तो हम कोई भी हमारी इनर पावर नहीं होने के कारण हम उसे फेस नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो ये सब बातों से अगर मुक्त होना है तो हमें अपने को अंदर से आत्मा को सशक्त बनाना जरूरी है। तो इसी विषय के आधार पर आज का ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आप यहाँ पर 4-5 दिन रहेंगे और इसी के आधारित आप ज्ञान सुनेंगे और अपने आप को एक नया जीवन प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे डायस के मेहमान, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी, जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। आप स्टेज पर आए, आप सब कर्तव्य से इनका स्वागत करेंगे मेहमानों का। राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांत मिश्रा जी, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदित्य कुमार मोहपात्रा, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुरेपल्ली नंदा, जज हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद। आदरणीय पुष्पा दीदी जी, चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राजयोगिनी लता अग्रवाल जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, आप थोड़ी देर में हमारे बीच में पधारेंगे। राजयोगी डॉक्टर नाथमल जी कटक, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। बीके डॉक्टर बी के रश्मि ओझा जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, सभी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे जजेस पधार चुके हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांत मिश्रा जी, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, हम सभी कतल धनी से आपका स्वागत करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदित्य कुमार मोहापात्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस जस्टिस सुरेपल्ली नंदा जी, जज हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नियम है कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो परमात्मा की याद करके शुरू करें। वैसे तो परमात्मा को हमें अपने साथ में ही रखना है, फिर भी उनको पहले स्मृति में रखकर हम कार्य शुरू करते हैं और कार्य संपन्न करने के बाद भी उनसे धन्यवाद करते हैं तो वो कार्य में बहुत सफलता मिलती है। तो हम भी इस कॉन्फ्रेंस में परमपिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करते हुए उनकी स्मृति में 2 मिनट बैठेंगे। ओम शांति। कितना अच्छा गीत सुना हमने, ईश्वर से जो योग लगाए बन जाए वो गुणवान। तो उनकी स्मृति से हम गुणवान बनेंगे क्योंकि वो गुणों का सागर है, तो हम उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे तो उनके सारे ही गुण हमारे अंदर आएंगे। अभी मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंच पर हम ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुरेपल्ली नंदा मैडम, आप आए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सदा ही अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन मेहमानों का बैजेस प्लांट और अंग वस्त्रम द्वारा स्वागत करेंगे। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और इसमें ही आपका भी स्वागत है। हमारी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएंगे। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी फलक और कुमारी फेनिशा अहमदाबाद, आप आकर अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। आपके गीत के बोल है शुभ दिन आयो रे।
फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई भगा परिहारी रे शक्कर भाको झांकी झांको हुई जतन किए तैयारी रे मन हर जाओ घन बर जाओ धन सुखवारो जी रे
आयो रे शुभ दिन आयो रे
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी फलक और कुमारी फिनिशा, बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। फिर से एक बार आपके लिए स्वागत है। बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। हमारे बीच आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी पधार चुके हैं। बहनों से निवेदन करती हूँ आपका बैज और प्लांट और अंगवस्त्रम द्वारा स्वागत करें। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल और ब्रह्मा कुमारी है, हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं और हम आपसे सदैव ही गाइडेंस लेते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम चलते रहते हैं और सक्सेस पाते रहते हैं। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता युग रतन, आप हमारे शांतिवन परिसर में रहते हैं और बहुत सुंदर गीत की रचना भी करते हैं, गाते भी हैं। आज भी हमारे लिए आप स्वागत गीत गाएंगे भ्राता युग रतन। ओम शांति।
तो न्याय के रखवाले आज परमात्मा के घर में पधारे हैं और आप सभी भी, क्योंकि दुनिया में कहावत कहते हैं कि इस व्यक्ति के बात पत्थर की लकीर है, उसकी बात पत्थर की लकीर हो ना हो, लेकिन हमारे देश में ये तो गायन है कि एक बार जब कोई न्याय जस्टिस अगर कोई बात कह दे तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, सदा के लिए रूलिंग बन जाती है। तो इतनी महान आप सबका जो वो महानता है और आपको जो इस देश ने दिया है, संविधान ने दिया है, आप सबका आज परमात्मा के घर में दिल से अभिनंदन है, स्वागत है।
न्याय के रखवाले, न्याय के रखवाले तशरीफ लाए, स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं। न्याय के रखवाले तशरीफ लाए, स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं।
अभिनंदन में आप भी सम्मिलित हों अपनी तालियों से।
देवता आज है आए, इंसाफ के देवता यहाँ पे आए, इंसाफ के मंदिर में है मूरत सजाए, न्यायविदों का दिल से अभिनंदन है, हो न्याय कर्मियों का दिल से अभिनंदन है, दसो दिशाएं करते वंदन है, विधि वेता विधाता प्रभु भी आए, विधि वेता विधाता प्रभु भी आए, स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं। अनेकों का जीवन सवारा, आपने है अनेकों का जीवन सवारा। न्याय हेतु सभी ने आपको है निहारा। आध्यात्मिक सशक्तिकरण जो हो जाए, हो आध्यात्मिक सशक्तिकरण जो हो जाए, न्याय जगत में अलौकिक प्रगति हो जाए। प्रभु की है यही तो शुभकामनाएं, हम सबकी यही है शुभ भावनाएं। स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं।
विश्व का सर्वोच्च न्यायकारी, वो सुप्रीम दरबार जिसकी लगती है उस परमात्मा के घर आप आए हैं। आपका दिल से वो आह्वान करते हैं।
सर्वोच्च न्याय का ये दरबार, सर्वोच्च न्याय का ये दरबार, विश्व मुख्य न्यायाधीश का ये घरबार। आप और हम उनकी ही संतान है, हो आप हम सभी उनकी ही संतान है। आपसे बढ़कर क्या कोई महान है, ज्ञान सरोवर में आप हैं आए। यहाँ प्रभु ज्ञान की धारा बहाए, स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं, दिल से करते जाएं। न्याय के रखवाले तशरीफ लाए, स्वागत हम आपका दिल से करते जाएं, 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 दिल से करते जाएं।
बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद युगरतन भाई जी। अब मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ हमारे मंचासीन मेहमानों को, एक विशेष हैंडमेड ब्रॉच लाया है तो वो उनको लगाए। ये हैंडमेड ब्रॉच का इसलिए महत्व है क्योंकि हमारी एक बीके बहन ने खुद, खुशबू बहन ने, जयपुर से हैं आप और आपने इसी प्रोग्राम के लिए अपने हाथों से बनवाए हैं। खुशबू बहन आप खड़े हो जाएंगे, सबको और मैं मंचासीन मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप कृपया इस ब्रॉच को लगा के रखें, आपके साथ ले जाएं। ये सुंदर ब्रॉच आपको यहाँ की याद दिलाएगा आगे भी। छोटी कुमारियों ने हमारा डांस के द्वारा स्वागत किया, युगरतन भाई जी ने हमारा गीत के द्वारा स्वागत किया। अब शब्द सुमनों द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, आपका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 30 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं और तन मन धन से बहुत डिवोशन से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं। इंदौर में एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है, उसे भी आप ही संभाल रहे हैं, बनाने के लिए सारा कारोबार आप ही कर रहे हैं, आपके गाइडेंस में वो आगे बढ़ रहा है। और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे स्पिरिचुअलिटी को आप लाए, प्रोफेशनल लाइफ और प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाया जाए, इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी के एक एग्जाम्पल है। और जूरिस्ट विंग में जो भी कार्यक्रम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सब में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, गाइडेंस देते हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि कभी फोन करो और भाई साहब रिप्लाई ना दे, बाय चांस रिप्लाई नहीं दे पाए तो भाई साहब तुरंत कॉल बैक करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, लेकिन वो कभी भी अपना अभिमान नहीं दिखाते कि मैं बड़ा हूं। ये तो ऐसे भाई साहब के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण। स्वागत करते हैं हम आपका, आप है हमारी प्रेरणा का कारण, आप है हमारी प्रेरणा का कारण। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी शब्द सुमन द्वारा हमारा स्वागत करेंगे।
ओम शांति। कितना अनूठा और कितना अलौकिक संगठन है, ऐसे प्यार के वाइब्रेशंस तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जहां ऐसी देवात्माएं जो हैं और बनने वाली हैं विराजी हों, मीठे प्यारे बाबा की इस महासभा में विराजमान आप सभी, संपूर्ण देश से पधारे न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, सीए सीएस और अन्य सभी क्षेत्र से जुड़े लोग, सबका मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। डायस पर विराजमान हमारे यज्ञ की शान, या यूं कहें कि यज्ञ के फाउंडेशन, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा वो भाई साहब को देखने से लगेगा कि ब्रह्मा बाबा कितने ऊंचे होंगे। जब भाई साहब इतने ऊंचे व्यक्तित्व के धनी हैं, माननीय हमारे भाई साहब ब्रजमोहन जी ब्रह्मा कुमार, जो हमारे संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, हम जहां बैठे हैं जिस परिसर में ज्ञान सरोवर, वहां की संपूर्ण प्रशासन की संचालन करने वाली और हमारे यज्ञ की जॉइंट चीफ आदरणीय हमारी बहुत प्यारी सुदेश दीदी जी, जो जर्मन का भी सारा प्रशासन देखती है, जर्मनी का भी, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री आर के पटनायक साहब जो कटक उड़ीसा से पधारे हैं हमारे बीच, माननीय न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा साहब जिनको हमने रात को शाम कल के सेशन में सुना और सब बहुत प्रभावित हुए, माननीय आदित्य कुमार जी मोहपात्रे उड़ीसा से पधारे हाईकोर्ट जज साहब, माननीय मैडम जस्टिस सूर्यपाली नंदा हैदराबाद तेलंगाना से पधारी, रश्मि ओझा साहब जो बॉम्बे से पधारी हैं, हमारे जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, कटक से पधारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे भाई साहब नसवल जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हेडक्वार्टर पे हैं लता बहन जी, और सारी रूपरेखा तैयार करने वाली और इतना सुंदर कार्यक्रम का संचालन करने वाली हेडक्वार्टर पर सारा कोऑर्डिनेशन करने वाली श्रद्धा बहन, आप सबको मैं बहुत श्रद्धा से नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम सब केवल न भाग्यशाली हैं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि परमात्मा की वो श्रेष्ठ संतान है जो इस बात की आकांक्षा रखती है कि हम अपना भी परिवर्तन करें और जिस जगत से, जिस कार्य क्षेत्र से हम जुड़े हैं, उस न्याय जगत की अलौकिक प्रगति करें। एक होती प्रगति, एक होती अलौकिक प्रगति। तो इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य का क्या वर्णन करें हम। हर वर्ष हम देखते हैं रिजल्ट्स में, ऐसी ही कॉन्फ्रेंस साल में 2-3 बार यहां बाकी देश में, और इतने अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। 20-25% अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण और दूसरे लोग कंटिन्यूअस मेडिटेशन करके और दूसरों को भी सिखाते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट इस आध्यात्मिक संस्था द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का है। न्याय जगत में केवल अधिवक्ता या न्यायाधीश ही नहीं, लिटिगेंट्स, वे सारे कर्मचारी जिनके बिना इस न्याय जगत में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, उन सब की आकांक्षा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए, विश्व का इतिहास उठा के देखिए, हम ही वो व्यक्तित्व वाले लोग हैं जो बंधन से छुड़ाने की एक विशेष कला रखते हैं। परमात्मा ने ये विशेष गुण केवल हम लोगों को दिया हुआ है, चाहे फिर गुलामी का बंधन हो, चाहे दूसरे बंधन हो, चाहे जेल में रहने वाले कैदी का बंधन हो, चाहे लिटिगेंट्स के कोई बंधन हो, उन सबको तो छुड़ाते ही हैं। और परमात्मा ने एक विशेष क्वालिटी दी है हम सब में कि हम अब इस देश और समाज को और सारे संसार को सारे विकारों के बंधन से छुड़ाने में भी अग्रगण्य रहेंगे। इसलिए संविधान के इस विशेष पिल्लर का बहुत महत्व है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मेरी विचारधारा में ये वो चौथा पिलर है, फोर्थ पिलर, जो संविधान, प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय व्यवस्था, समाज की खुशी को स्थिर रख सकता है। हम जो 3 पिलर अभी तक कार्य करते रहे, अब समय की मांग है कि कोई चौथा पिलर होना चाहिए, अन्यथा इन 3 पिलर से काम नहीं चलेगा जो समाज में खुशी को स्थापित कर सके, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। एक मालवा क्षेत्र की कहावत है, या वहां जो कार्य किया जाता है उसकी शैली है, एक टिपाया बोलते हैं। टिपाया यानी एक स्टूल ऐसा ऊंचा जिसमें 3 पाए रहते हैं, और वहां के कृषक लोग अक्सर अभी तक खड़े होकर उसके ऊपर, और जिधर हवा चलती है उधर उस गेहूं या धान के भूसे को ऐसे उड़ाते हैं। अब तो मशीनें आ गई, समय बदल गए, लेकिन उस पर बैलेंस रख के खड़े होना एक बहुत बड़ी आर्ट थी। वो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही, इसलिए बिना 4 पिलर के अब वो काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार अब जब तक आध्यात्म का 4th पिलर हम नहीं लगाएंगे, तब तक न संविधान, न प्रजातंत्र, न समाज, न व्यक्ति की विशेषताएं, न हंसी खुशी को हम स्थिर रख सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि हमारे शब्द, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्णायक है, परिचायक है, या चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण हमारे ही शब्द करते हैं, हमारे कर्म फल प्रदान करते हैं। इस श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ शब्दों का चयन करना, यह हमारा कर्तव्य है। एक अमेरिका के मैनेजमेंट करने वाले व्यक्तित्व का नाम आप सबने सुना है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कितना ही धन संपदा हो, कितना ही वैभव हो, किंतु आप अधूरे हैं जब तक कि आपका बहुत सकारात्मक और बेस्ट एटीट्यूड ना हो। दृष्टिकोण ही सब कुछ है। मनुष्य की विचारधारा से दृष्टिकोण बनता है। मनुष्य की विचारधारा अभी तक जो थी वो अध्यात्म के अभाव के कारण अब नकारात्मक होती चली जा रही है। इसलिए हमें हमारा दृष्टिकोण भी ठीक करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अन्य लोगों का कौन करेगा। दूसरी बात, हम इस बात का ध्यान ही नहीं रखना चाहते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। हम समझना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते। सत्य और असत्य का भेद करने वाला विवेक हमारा जागृत है या सुप्तावस्था में चला गया है। यदि विवेक जागृत नहीं है तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में अंधकार है, और अंधकार दुख का बहुत बड़ा कारण है। देव सहनी और देव उठनी ग्यारस का नाम भी आप लोग सब जानते हैं। जब श्री हरि विष्णु सोते हैं, उनका विवेक सो जाता है कहने का भाव, तो मधु और केटप जैसे राक्षसों का जन्म हो जाता है, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ऐसी मान्यता है। हम तो मनुष्य हैं, यदि हम और हमारा विवेक सो गया तो जो दुख के पहाड़ टूट रहे हैं सारी दुनिया में, क्या यूक्रेन की बात करें और क्या रशिया की बात करें और किस अमेरिका की बात करें, किस अर्थनीति की बात करें, किस जाति के भेदभाव की बात करें, क्या क्या ना करें, क्या स्थिति हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यात्माओं ने अपने विवेक को अंधकार में बना लिया है। हम जानना ही नहीं चाहते कि हम में रजोगुण चल रहा है, सतोगुण चल रहा है या तमोगुण चल रहा है। यदि हम जान जाएं, हम कोशिश करें और पहचान जाएं कि मुझ में तमोगुण है, तो दूसरों को न भी बताएं, हम अपने ही कान में चुपके से कह दें कि मुझ में तमोगुण है, इसे ठीक करना चाहिए, अन्यथा यह हमें आत्मविस्मृत करा देगा, परमात्मा से दूर करा देगा और दुख उत्पन्न कर देगा। हम अपने बोलने पर भी ध्यान नहीं देते, किसी रिप्लाई को करने में इतने इतने उतावले होते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि वो यथार्थ है, सत्य है, किसी को अच्छा लगने वाला है या नहीं है, और बोलते हैं। उस मनुष्य का बोलना यथार्थ और सार्थक जिसका होता है, वही समाज का प्रिय व्यक्तित्व होता है। महाभारत में आवाज उठी, अश्वत्थामा मारा गया। उसके पिता द्रोणाचार्य बोले, असंभव, ये तो वो बात हो गई कि जैसे आप सूर्य निकलेगा ही नहीं, चांद निकलेगा ही नहीं, असत्य भाषण है, क्योंकि अश्वत्थामा अजय है। भीम झूठ बोल रहा है, अर्जुन सत्य नहीं बोल रहा। यदि युधिष्ठिर कह दे कि हां अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूं, तब युधिष्ठिर ने कहा, वो अलग कहानी है, कहने का भाव कि हमारा चरित्र, हमारी गंभीरता, हमारी वाणी में वो संयम होना चाहिए जो सारा समाज, देश हम पर विश्वास करे कि हमने क्या बोला है, कितनी गंभीरता है। और हम तो उस जगत से जुड़े हुए हैं जहां हमारे एक एक शब्द का बहुत मूल्य है, और ये सब हम केवल अध्यात्म से सीखेंगे। हमारे बीच बहुत बहुत विद्वान वक्तागण बैठे हैं, न्यायाधीशगण बैठे, ब्रजमोहन भाई साहब बैठे हैं, हम सब उनके प्रवचन का लाभ लेंगे। मैं आप सबका पुनः पुनः बहुत हृदय के अंतिम कॉर्नर से बहुत अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, आपने शब्द सुमनों द्वारा हमारा स्वागत भी किया और ये भी बताया कि हमारे शब्द किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करते हैं। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बी के रश्मि ओझा, मुंबई, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। आप आज के इस कॉन्फ्रेंस के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में हमें बताएंगे। थोड़ा सा इसके पहले मैं संक्षिप्त में आपका परिचय दे दूं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग हैं और करंट डिजाइनेशन आपका लौकिक में चेयर प्रोफेसर चीफ जस्टिस छागला चेयर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है एंड मेंबर ऑफ सेवरल एकेडमिक कमिटीज ऑफ सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी NMIMS ICC मेंबर हॉपकिंस इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। रश्मि बहन जी की बहुत बड़ी विशेषता है, वो बहुत अधिक नम्र है। कहते हैं ना विद्या विनयन शोभते, तो जितना वो विद्या में ऊंची है उतनी ही वो विनम्र है। तो आपके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, ह्यूमिलिटी इज द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्चूज, वी कम नियरेस्ट टू द ग्रेट व्हेन वी आर ग्रेट इन ह्यूमिलिटी। तो आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बीके रश्मि ओझा जी को।
ओम शांति। The God of Supreme Justice, Parampita Shiv Paramatma, all the esteemed dignitaries on the dais and off the dais, sisters and brothers present today, Om Shanti and a very good morning to one and all. Since kal se hum sun rahe hai ki spiritual empowerment of legal fraternity about ethereal progress, सो द रूट क्वेश्चन जो हमारे मन में आ रहा है, वाई स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी एंड वॉट इज एथीरियल प्रोग्रेस। कल के सत्र में लॉर्ड चीफ जस्टिस मिश्रा सर ने कहा कि एथीरियल, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एथीरियल इज समथिंग वॉट वी टर्म एज डेलिकेट और लाइट, समथिंग विच इज नॉट टैंजिबल, यू कांट सेंस इट, but these are all imbibed with values. और इस पर से एक घटना मुझे याद आ रही है, ये सत्य घटना है 1881 में, जब एक प्रोफेसर ने क्लास में सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स की तरफ देखा और एक स्टूडेंट को चुना और उसको पूछा कि टेल मी वेदर God has created everything in the universe. The student said yes. Professor ne kaha, what about evil, paap, whether God has created evil also? To wo student khamosh reh gaya. Baad mein wo student ne professor se pucha, agar aap permission de to main ek prashna aap se puchna chah raha hun. So the professor allowed. तो स्टूडेंट ने पूछा, सर कैन यू टेल मी वेदर कोल्ड एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, ठंड है कि नहीं एनवायरमेंट में? तो प्रोफेसर ने कहा यस ऑफ कोर्स, डोंट यू फील सो कोल्ड एग्जिस्ट? तो स्टूडेंट ने कहा सर आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग, आपका जवाब गलत है, इट्स नॉट कोल्ड दैट एग्जिस्ट, इट्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट ने पूछा, सर वेदर डार्कनेस एग्जिस्ट? तो प्रोफेसर ने कहा यस, आफ्टर डे इट्स नाइट एंड देयरफॉर डार्कनेस एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। तो स्टूडेंट ने कहा सर आई एम वंस अगेन सॉरी, यू आर रॉन्ग, वंस अगेन रॉन्ग, बिकॉज इट्स नॉट डार्कनेस, इट्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। And so also, just as cold is complete absence of heat, darkness is complete absence of light, so also evil does not exist, it's complete absence of love and faith in God. And the student was none other than Swami Vivekananda. So there is a stunning merger, or there is a stunning convergence between law and spirituality. Yesterday we did hear Justice Mishra sir, how there is a stunning convergence between law and spirituality. A Chinese jurist Sun Tzu had said once that insan ki fidrat hai, man who is by his very nature wicked needs teaching and discipline in order to be transformed and reformed. The ancient rulers understood the viciousness of man and therefore created laws, morals and institutions so that human instinct, human beings be transformed. But aaj hum kya dekh rahe hai, whether our human beings truly transformed, unless and until those values are inculcated or those values are imbibed within the system. So doing justice when it comes to spiritual empowerment of legal fraternity, doing justice itself is the greatest tribute to justice. The central idea of justice delivery system is that justice must not only be done but seem to have been done. We are all aware that there are technicalities. There are loopholes and defects in many of the laws. The Law Commission of India has declared many, many laws as obsolete laws, which are really not required and deserves to be repealed. It's off late that 1st July 2024 se sirf 3 kanun mein changes honge aur wo bhi kafi sare changes nahi hai. So laws, many of the laws are defective. So also technicalities, delays, cost of litigation are other factors which hinder smooth administration of justice. And therefore the principles of justice, equity and good conscience were introduced. But the system is still not free from defects and loopholes. Clarity, certainty and stability are the virtues which are conspicuously missing in administration of justice, and that is what we read off and on in the various literature as such. So hamare sabse pehle jo jurist wing ke patron member rahe justice V.R. Krishna Iyer sir, bar bar maine unko suna hai kafi samay yahi apne Madhuban mein jo jo conference hoti thi ki it is the divinity and spirituality which is the missing dimension. Divinity and spirituality is existing in each one of us, but we need to arouse by igniting the light of the soul or consciousness. So that is the missing dimension, and if that is done, then it is the spiritual empowerment of legal fraternity as such, which will consequently lead to the ethereal progress. इस तीन दिन की नेशनल लेवल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में आप काफी सारे लीगल एक्सपर्टीज को सुनेंगे, काफी सारे सीनियर राजयोगा टीचर्स को सुनेंगे, एंड देर विल बी लॉट ऑफ इंट्रैक्शन एंड यू विल बी एंटरटेन्ड एज वेल, बट आई एम श्योर दैट यू विल मेक मैक्सिमम यूटिलिटी इस तीन दिन का जो हमें अपॉर्चुनिटी, जैसे कल लता बहन जी ने कहा कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि जूरिस्ट विंग इज वन ऑफ द 21 विंग्स विच टीचिज अस अ ब्लेंड बिटवीन लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स रेंडरिंग अ ह्यूमन सर्विस टू द नेशन फॉर द नोबल कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट वी मेक द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ दीज थ्री डेज सेशन एंड सी दैट वेन वी गो बैक होम वी कैरी होम द मैसेज ऑफ वॉट वॉज टॉट यर एंड वी गो back home with a full ratio or proportion of spiritual empowerment. Aur ant mein jab ye theme ke bare mein main soch rahi thi to Mr. Rabindranath Tagore ka ye quote shayad isi theme se juda hua hai, which I would like to tell, and that exactly relates to the theme of this conference. So I will just quote him. He said that where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into the fragments by narrow domestic wall, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreaded desert sand of bad habits, where the mind is led forth in the forward direction by thee into the ever widening thoughts and action. So in that heaven of freedom, my father, let my country awake. In that heaven of freedom, let my country awake. In that heaven of freedom, my father, let my country awake. A theme which is the quote which is exactly compatible to the theme of this Jurist Wing conference. So I understand that precisely, you know, these are the aims and objects of the conference theme as such, and my humble appeal to all of you is to make maximum utility of it. Thank you, and Om Shanti.
थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि ओझा जी. आपने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं. अभी हम इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे कैंडल लाइटिंग के द्वारा. तो मैं स्टेज पर हमारे जो मेहमान उपस्थित हैं, आप सबसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप आगे आ जाए और कैंडल लाइटिंग करें. ये कैंडल लाइटिंग इसलिए किया जा रहा है कि ये एक सिंबॉलिक है, परंतु हमें एक्चुअली अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है, और इस आत्मा की हमें अपनी ज्योति जगानी है, इसलिए हम ये कैंडल लाइटिंग कर रहे हैं. दीपक की तरह जगमगाए, हमें दीपक की तरह जगमगाना है. और आप सभी सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएं और खड़े हो जाएंगे. मोबाइल की टॉर्च जलाएं, बहुत सुंदर होगा. आप भी सभी कैंडल लाइटिंग करेंगे इसके बीच में ही, और कुछ नाम में अनाउंस. मैं कुछ नाम अनाउंस कर रही है सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय विद्या बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बेलगाम, बीके संदीप अग्रवाल जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, रमा कुमारी ईशु बहन, विनोद कुमार शर्मा जी इंदौर जस्टिस, बहन मधु तलवार जी एडवोकेट एंड मीडिएटर एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीए रोहित भाई पंजाब बत्रा एंड ओबेरॉय एसोसिएट्स, सीए नरेश गोयल जी एमडी पंचानंद लिमिटेड दिल्ली, ब्रदर अशोक ओआरसी. आप सभी भी कैंडल लाइटिंग करें नीचे रखे हुए इसमें.
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में. जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में. शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला. राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला. दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में. जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में. शुभ संकल्पों के दीप जलाए.
जिसके लिए हम बहुत आतुर थे जिस क्षण के लिए, अभी हम उनसे सुनेंगे आज के इनॉग्रल स्पीच बाय चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक. आपने 1993 में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे जज साहब का, चीफ गेस्ट थे आज के. आपने 93 में लॉ डिग्री ऑब्टेन की और 95 में अपने बार ज्वाइन किया, और फिर 99 से आपने जुडिशियल ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन किया. उसके बाद में आपने रिजाइन दिया और अगेन फिर हाईकोर्ट बार आपने ज्वाइन किया, और बाद में 2009 में आप उड़ीसा हाईकोर्ट में जुडिशियल सर्विसेज सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज अपने क्लियर किया और फिर रजिस्ट्रार बने, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लॉ बने और 2021 में बहुत कम समय में ही आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की। आपके लिए फिर से एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। 2021 में आप उड़ीसा हाईकोर्ट के जज बने। कहते हैं द स्केल्स ऑफ जस्टिस आर नॉट बैलेंस्ड बाय जजिंग द रॉन्ग एंड प्रेजिंग द राइट बट फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ ऑल इल्यूजन्स एंड गिविंग द रियल जस्टिस। और ऐसे ही रियल जस्टिस देने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज आपका इनॉग्रल स्पीच आप प्रस्तुत करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी।
नमस्कार टू ऑल। एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑन एंड ऑफ द डायस, माय डियर participant guests present over here, ladies and gentlemen, first of all I would like to express my heartfelt gratitude to the organizer of the event for having given me this wonderful opportunity to be part of the judicial conference. I do not know what to say, how to begin and where to end. In fact, I am speechless after such wonderful speeches by Justice Rathi and Madam Dr. Virja with so much of eloquence. But since invited as the chief guest of the event, I have to speak few lines. In spite of success in life, despite accomplishments, we many of us at times feel a vacuum within, and so I, with no exception to it, and hence the need for a change with the transformation. Transformation through a spiritual process. In fact, being present here as a part of the event, I say it would be a humble beginning for me towards a change, transformation in life. And therefore, I am truly blessed. In fact, I would say that the process in me has already started towards spiritual awakening. I would further say that when I am present in this auditorium, in the immediate presence of so many dignitaries, learned men and women, it would be a spiritual nourishment for me. So I'm very happy, truly blessed for having been a part of the judicial conference. I must admit one thing, when I was approached by Dr. Nathmulji a month before with an invitation for the judicial conference. I was a little bit indecisive. Honestly speaking, I was reluctant. As I asked a question to myself, whether I am the right person chosen for the event, since I consider myself having too little knowledge on spirituality, and that to attend a function organized by the Brahma Kumaris, which is involved in spiritual activities throughout the world. I also asked the question to me as to what purpose I would serve being present at the event, whether I do have the wherewithal to deliver the goods at the conference. I was a bit skeptical. But then I saw the invitation booklet and the subject of debate and deliberation at the conference, which aroused interest in me because the subject has a huge relevance in the present day context. The society is full of complexities. Too many challenges are there. So many challenges are to be met. As judges, we have to deal with many situations on administrative and judicial side. So considering the subject, which is based on spiritual empowerment, vis-a-vis the legal fraternity, I thought I should be a part of it. So I finally agreed to attend the function. But I didn't know that I would be the chief guest of the event. This is one of the reasons. The second reason is related to Justice Aditya Kumar Mahapatra, learned brother, who actually persuaded me to attend the function. I'd say that my presence here is because of him. In a way, Justice Mahapatra was instrumental in persuading me to be a part of the conference. With these reasons in mind and purpose, I felt I should attend the function as a participant guest. Insofar as spirituality is concerned, I am a first timer, I am a beginner. But while flipping through pages of an article some time ago, I realized that the word spirituality has been derived from a Latin word, spiritus, which means breathe. A word which is akin to a Sanskrit word, prana, which, if I am not incorrect, relates to chetana, consciousness. Spirituality is a loaded concept, a heavy subject, especially for me. But even though it is difficult to convey and express in words, but can be understood and realized. What I have understood is that spirituality does mean not merely the bodily existence, not an experience with the sensory filling, but something beyond. It is, in fact, the non-corporeal aspect of human life. What is the purpose behind why we are into the mortal world? What is the purpose of the bodily existence with its spiritual dimension? It's a part of human life. We are a part of the society. Society is comprised of people of different strata. At times, as we know, society becomes disorganized, disoriented for a variety of reasons. There's a tendency in society at times to be indisciplined, which is a fact. So therefore, in order to ensure the society to be disciplined, we do have the law, rules and regulations. We feel that law and justice won't allow the society to be disorganized. In fact, human is considered to be indisciplined and has a tendency to do so. It reminds me of the words of a great man, Aristotle, which I quote: "It is best, man is the noblest of all animals. When separated from law and justice, he is the worst." So therefore, the conclusion would be, in order to maintain the sanctity of a disciplined society, there's a need for law and justice. But as we understand, we cannot entirely depend on law and justice to preserve the sanctity of the society. And there the spirituality comes into picture. As we know, if there is spirituality all around, there would be less volatility, there would be less fight and friction, less violence in the society. So therefore, the need of the hour, what we feel, is that apart from law and justice, which is meant for the maintenance of an organized society, spirituality is highly needed. Since because we cannot remove all evils and cure all ills, simply relying upon or depending on the laws in place, the solution lies with the spirituality. So therefore, in order to enforce law and justice, we need to remind ourselves that there is a huge need and demand of spirituality among the members of the society in order to ensure a lasting peace all around. So far as law and spirituality is concerned, both are, as I said, are integrally connected to each other. As I understand, law would serve its purpose and achieve the desired result only if the spiritual dimension of it is really understood and applied. As we know, we had natural laws which are called the higher laws. Initially we had no written law, everything was unwritten. The natural laws were based on moral values, ethical principles. Then subsequently the codified law was brought into existence. The constitution is the mother of all laws. The codified law has been brought into force, keeping in view the individual rights. As we know, the laws are at times morally neutral. For instance, earlier some of the acts which were considered to be moral is no more an offense under the codified laws. But then we need to understand that the codified laws have been borrowed from the natural laws with just exceptions. In recent times, the Supreme Court in number of judgments, starting from Kesavananda Bharati in 1970s till recently, has highlighted upon the constitutional morality. So therefore, an offense of consensual homosexuality, which was considered to be immoral in the past, is no more an offense. And hence it has been decriminalized. Such an offense is no more punishable under Section 377 IPC. This has been the difference. Otherwise, we have borrowed all such principles. And as far as the codified laws are concerned, I am of the view that we need to understand the spiritual dimension of such laws for its application. In fact, when I said about the constitutional morality with reference to the neutral laws and morality with reference to Section 377 IPC, it reminds me of the judgment of Delhi High Court, to which Dr. Justice Muralidhar was a part of, and it had decriminalized the said offense on the basis that what was once considered to be not morally correct is not an offense because it deals with individual rights under the Constitution. Though it was overturned for a brief period in 2013, the judgment in Suresh Kaushal, but restored to in Navtej Singh Joha. But the essence is that while considering the application of laws in the present day context, we need to understand that spirituality has a place. Considering the challenges we are to deal with as members of the legal fraternity, as judges, as lawyers, pendency in dockets which is exploding, disposal is less in comparison to the filing. Of course, Odisha High Court is an exception to it. We have to understand the real purpose of the laws, and keeping in view the spiritual dimension of the law in place, to apply it. But then there is a reality that judges are humans. Judges are not robots and are liable to commit mistakes. As we know, humans are not infallible. And under varied conditions, pressing circumstances, we tend to commit mistakes, like ordinary humans. And we find a lot of aberrations, distortions in life, aberrations in the sense of varying degree, aberrations in behavior, aberrations in mannerism, distortion in personality. We often succumb to setting standards which at times lacks logic and reasoning, maybe on account of notions, personal bias and prejudices. We carry perceptions thinking that the same is the principle. As I often say, there's a clear demarcating line between perception and principle, which should not be mistaken. We are also unknowingly at times found guilty of sermonizing others, preaching, not following ourselves in thought and action, and hence are branded as individuals without substance or characters in duplicity. So therefore, merely by becoming the members of the legal fraternity, it doesn't help and assist in the growth and development of the society. What is needed is to understand the real purpose of being a judge, a lawyer, taking into account the spiritual aspect of human life. If there is no change or transformation, with the aberrations and distortions removed, remedied in time, it is certain to bring the system which is in place to immense disrepute. So we are responsible for the society as members of the legal fraternity and judges and lawyers and other stakeholders to understand the sacred functions, duties and responsibilities assigned to us. In fact, somewhere I read that there is an ancient spiritual admonition meant for the doctors: physician, heal thyself. And it is also said in the said article that the said principle equally and evenly applies to the judges. Doctors heal the ills. We also heal the litigants by delivering justice. But healing self is more important before healing others. So therefore, I would conclude my speech by saying that as responsible members of the judicial institution, we as judges, lawyers, are to work in tandem and harmony to ensure that the law and justice which is meant for the society is duly applied, keeping in view the spiritual aspect of it. Since we are having other learned speakers, I do not want to take more time. And whatever the thoughts which were in me, I bared it all before such a gathering so learned and already engrossed in spiritual activities. So if I have committed any wrong, error, or transgressed my limit during the speech, I may be pardoned. With these words, I conclude my speech, but before winding up, I once again thank the organizer of the event for having given me this beautiful opportunity to part of the conference. Thank you all. Namaste.
Thank you very much, Honorable Mr. Justice R.K. Patnaik ji. He shared his beautiful thoughts and his views on spirituality with us. अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी को. आप जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं. आप जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के सीनियर डायरेक्टर हैं. आपने बचपन से ही आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं. आपने मात्र 16 वर्ष की आयु में आप एक स्कूल के हेडमिस्ट्रेस रहे हैं. आप तालियां बजाएंगे दीदी जी के लिए. आप अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां आपने छुई है, आसमान छुआ है. हमारी जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई, पहले आपने दिल्ली में ही सेवाएं की, सेवा केंद्र पर रहकर. जब विदेश में 1973 में जब सेवाएं शुरू हुई, तब आपको विदेश में सेवार्थ भेजा गया और वहां पर लंदन, जर्मनी और अन्य कई देशों में आपने हमारे सेंटर्स ओपन किए. वहां पर बहुत अभी तक आप वहां पर ही थे और पिछले साल से आप यहाँ इस ज्ञान सरोवर में स्थायी रूप से रह रहे हैं. आपके लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ. जो दिल के नेक हो ऐसे लोग भगवान ने कम बनाए हैं. जो दिल से नेक हो ऐसे लोग भगवान ने कम बनाए हैं. जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे समक्ष है. जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे समक्ष है. तो आदरणीय सुदेश दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें. आदरणीय सुदेश दीदी जी.
ओम शांति. ओम शांति. मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही सम्माननीय इंग्लिश में बोले ओम शांति. सीटेड ऑन डाइस माय डिवाइन एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट एजुकेटेड व्हाट शुड आई से not only just justice but in fact who realize and have given their valuable experience of to help people at the time of need. Now of course are present here, those are on dais and also those who are in front of me. Love for spirituality and at the same time of course helping to dispel the darkness, corruption, whatever is this, always these words are, you have heard, the absence of light is darkness. And it means now most of time it's known too much corruption, bhrashtachar, ignorance, anyay. At this time, this kind of, we can see more and more such kind of words are being used and experienced because something is missing. At the time of darkness, when the darkness is missing, light comes in the mind. And smell is not fresh, freshness is needed. Now is the time actually to bring that divinity and spirituality once again in the society and in this, especially this task when people need justice, people need nyaya, and we want such kind of word which has been always remembered. Ram Raja, Ram Praja, Ram Shahukar hai, Basay Nagri, जिए दाता धर्म का उपकार है। तो जब अन्याय अथवा और ये कहे करप्शन, इट इज स्वधर्म की कमी, इट इज एक्चुअली व्हाट इज एब्सेंस, इज एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ लॉट हेयर वी रीड। भक्ति इज इनॉर्मस एवरीवेयर एवरी कॉर्नर। भगत डिवोटीज आर रिमेम्बरिंग गॉड एंड वन वर्ड कम्स इन द एंड, गॉड डज जस्टिस। जस्टिस इज इन गॉड्स हैंड और इट इज इन गॉडली डिवाइन पावर्स हैंड। व्हेन देयर इज रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी बिकम्स रियलिटी ऑटोमेटिकली। इन फैक्ट देन देयर इज नो नीड ऑफ दिस एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ प्रूविंग थिंग्स और एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट आइदर, बिकॉज इट्स योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन ट्रू सेल्फ इज एबल टू रियलाइज वेयर वी गो रॉन्ग। एंड इवन एट द प्रेजेंट टाइम वी सी इन मैनी केसेस व्हेन ट्रुथ इज एक्सेप्टेड, गिल्ट इज एक्सेप्टेड, पनिशमेंट बिकम्स लेस। ऑफकोर्स वी सी टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंजेस एंड लॉज सिस्टम चेंज्ड। There was a time when there was no type of any kind of corruption, impurity, any kind of theft, any kind of situation where people are suffering and they have to go into court and kachari. Word was not used. It was called divine. Divine name are used differently, different time. At the time of Maurya Vansh, when Chanakya Niti emerged, four things were definitely step by step incurred. Sham, Sami, Shanti, Dam, value or dand, payment. Sam, Dam, dand, punishment. And then bhed means variety type of politics or different nitis. Step by step, even in this system of nyaya changed. And now we are reached at the place, at the level where people don't even believe that it can be any kind of truth or 100% security or surety. Though there are justice, honest, benevolent, totally detached, wanted to help poor people or help the truth, but still there's always insecurity, there's always fear, there's no trust remain anymore, because spirituality, it became a picture, but not only the character of spirituality. For example, you have a picture of sunlight. The sun is shining, then sunlight is there. But I put a picture of the sunlight in the dark night, a picture, it will not give me light. I enjoy to keep a beautiful scene of scenery of the ocean. I cannot swim and I do not experience any kind of coolness and fresh. And if I want to swim in that, I will break my hands and feet. So what I want to say, there's a difference between just the wording and reality. Spirituality, when it's reality, which is known as adhyatmic, spirit connected with soul conscious stage, or in soul, being a soul. And then we also do understand that when reality is there, you begin to feel that conscious bites. Your own consciousness is telling you truth. When you speak the truth, you begin to feel that yes, I am able to amend myself, or I am able to improve my stage. So what is needed is to understand what spirituality is. What I want to say, to have the connection with the one who is totally detached, merciful, loveful, benevolent being. So which quality is needed for that spirituality to put into action is being totally a detached observer. Where there is any kind of attachment, no matter how much good you can make decision and you can use the laws, attachment will make one or another kind of some mixture, and then you become partial. Maybe not different way in partiality, but this is partiality, that you give the decision not exactly with this detached observer. You begin to absorb the influence of either attachment or some kind of selfish motive or some kind of your own maintain to own position. And this is what it is. It takes us away from the original stage of spirituality. Spirituality, reality is truth. Spirituality is pure. Spirituality is divine. Spirituality is forgiving. Forget for spirituality is accepting. At the same time, spirituality totally impartial. Then in fact there's no need even. I would like to share my feeling when we reach the highest level of spirituality taught by the Supreme Being Himself. Because Nyayakari is one, Supreme Justice is one. In this world as well, when Supreme Court case reaches, then it has to finish the case, whether it is complete or not. Sorry for saying this, but it is. But when we reach our spiritual level of truth, when we understand the connection with the Supreme Being, then each individual itself becomes totally honest with the self, and also if anything has been wrong by others, then is able to accept the situation and is help them to remove from this stage of suffering, not by punishment, but helping them to improve. When we are not able to help people, of course the government has to make the laws. When anything is wrong against the benefit or everyday activity where people begin to suffer, where we are see that every day one thing or another is wrong, then you need the help of laws, and that is important at the present time. But when we begin to take the help, or we begin to become the embodiment of these qualities, then automatically we are able to begin to make ourselves free from going into prison, because we are already, all of us are actually in a prison. Who should liberate us? Who should be our judge? Our own body consciousness puts us in a prison because of desires, because of temptation, because of greed, because of attraction, because of all this, which is we called it different kind of crimes. Not only just violent crimes, but we are doing violence with our own selves. And in order to finish violence, you need to practice power, the power of silence. In order to reach the divinity, when silence is increasing, the power of the truth becomes strong. Then when the truth and silence is increasing, love for the self and love for others increases, violence finishes, and you begin to help them. And you create your own self-respect, and naturally you experience respect for others, and no comment and no need to actually ask for any kind of judgment from others. You yourself become judge where we are going wrong, what I have to do, how I have to improve myself, and what are tying us with, what is putting us in prison. Five vices. We do remember, we do understand, we all are experienced, all these court and kacharis are there because of all these cases are lust, anger, greed, attachment, ego, different jealousy, hatred, competition. This is absent of spirituality. So when these so much expansion is there, all of us are in prison. Who should leave us? If all are trapped in a mouse trap, who will liberate them? So in order to be free from this, we have to increase our, liberate ourselves from this kind of bondage. Tan ka bandhan, man ka bandhan, dhan ka bandhan, samaj ka bandhan, prakriti ka bandhan, and most deeper and important is karma ka bandhan, the bondage of karma. And because of action, karma means action. When actions are vicious, naturally there is suffering, and either we are put in a physical prison, or you are always suffering in the internal prison. This is why we call the liberator, the purifier, Mukteshwar, Mukti Dene Wala Ishwar. And Ichha Puri Karne Wala, what? Man Ki Shanti, Dhan, Sambandh Mein Sukh, Prakriti Ka Prakop Ko Bhi, Sabhi Ke Prabhav Se Bhi Pare, Samay Aisa Satyug Sukh Ki Jab Truth Prevails, when truth, peace, love, purity prevails, I would like to actually give you, perhaps you might think, oh, my job will finish. I would like to give you good news. A time when the spirituality prevails, when relationship with God becomes real, and our own relationships become reality of being a knowledgeful soul, a peaceful soul, a loveful soul, a blissful soul, a powerful soul, a pure and peaceful soul, then automatically this reality liberates us from all kind of crimes, sufferings, and then there will be no any kind of papakaram or kukaram or crime. Then I give you happy news that there will be, your job will be finished. You understand my point? Will judge be needed at that time? What lawyers will be needed at that time? Ram Raja Ram Praja Ram Shahukar hai. Base nagri jiye deta dharm ka upkar hai. But then kya hoga? Ki dharm ka raj hoga, but dharm raj nahi hoga. जज को धर्मराज भी कहते हैं. धर्म का राज, इसलिए कहती हूँ कि आपका जॉब खत्म हो जाएगा. धर्म का राज होगा पर धर्मराज नहीं होगा. और वो स्वधर्म क्या है? आत्मा अपने स्वधर्म में टिके. और वो स्वधर्म कैसे मिले? जब आदि सत्य सनातन देवी देवता धर्म की जो दिव्य धारणाएं हैं, जहाँ प्रेम पवित्रता आनंद शक्ति का राज्य है, ऐसी जब दुनिया स्थापन होती है तो सुख की दुनिया आती है. इसलिए आध्यात्मिकता की सूक्ष्मता चाहिए. समाज ऐसा सुंदर बने, भक्ति तो हम बहुत करते आए, पर हमें दूसरों के अनुभव को उसी आधार पर उनकी पूजा की, देवताओं की, भगवान की महिमा की, पर स्पिरिचुअलिटी है डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन, परमात्मा के गुणों को धारण करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप से कनेक्शन, यानी आत्मा का अपने आत्मिक स्वरूप से कनेक्शन, और उसके साथ ही जब कनेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, तो एक्शन ठीक है, परफेक्शन लाइफ में है, तो किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट रहेगा ही नहीं, तो समाज सदा सुखी हो जाएगा, दुख कोई है ही नहीं, कंप्लेंट कोई है ही नहीं, डर कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये सुख का राज्य होगा। सचमुच न्याय मंदिर पहले बनाना होगा, कोर्ट कचहरी का ओरिजिनल देव तो न्याय मंदिर था, अभी मंदिर नहीं रहा। कहते अन्याय है तभी कोर्ट में जाना पड़ता है, अन्याय नहीं हो तो कोर्ट में क्यों जाना पड़े। मंदिर बन जाए, न्याय मंदिर बन जाए, तो ऑटोमेटिकली आप सब राजा बन जाएंगे, फिर राजयोगी बन करके अपने आप पर भी राज करेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे। इसलिए राजयोग की शिक्षा परमात्मा दिखा के बंधनों से भी मुक्त करता है और रिवॉर्ड भी देता है, प्राइज भी देता है, और कोई गुनाह जो किए हुए हैं उनको भी शक्ति भर के योग सिखा करके साफ कर देता है, माफ कर देता है, भस्म कर देता है, संस्कार बदल देता है। तो क्या हो जाता है, दुखदायी के बदले सुखदायी बना देता है। तो आप सब क्या बन जाएंगे, सिर्फ दुखों से छुड़ाने वाले जज नहीं, पर सुखदाता बन जाएंगे और सुख में रहने वाली प्रजा बन जाएगी। इसी को कहा जाता है सुख की दुनिया का राज, श्री कृष्ण का राज, श्री लक्ष्मी नारायण का राज, या राम राज। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच आदरणीय सुदेश दीदी जी फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एनलाइटनिंग अस। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए, शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांत मिश्रा जी, जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। इनको हमने कल भी सुना और आज मैं अभी ग्रीटिंग्स देने के लिए आमंत्रित करती हूँ, परंतु मेरा एक निवेदन रहेगा कि सभी अपने विचार संक्षिप्त में रखेंगे। There really can be no peace without justice. There can be no justice without truth, and there can be no truth unless someone rises up to tell you exactly means, and spirituality means the truth. और ऐसे ही सत्यता को अपनी ढाल बनाकर हमारे ये जजेस अपने कार्य में अग्रसर हो रहे हैं, और मैं निमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांत मिश्रा जी।
The spiritually advanced souls and the esteemed dignitaries on the dais and all the persons present here, I bow down to you and I bow down specially to the divinity within you. Yesterday we had discussed on the topic elaborately. Today there is a constraint of time. I'll be limiting mainly by recapitulating whatever I put forth before you. Now the objective of the conference, just to recapitulate, is to spiritually empower the legal fraternity for ethereal progress. And we also discussed that by ethereal progress we do not refer to any outward change, but an inner transformation of the personality. We try to identify the problem. Where is the problem actually? And from what little I know, and I had placed before this August house yesterday, that life is not a bed of roses. If we have happiness, then we have sorrow. If we have good health, then we have disease. If we have wealth, then we have poverty. These are our daily battles, and we are so much caught up in our daily battles that we are disconnected from our true self or the divinity which is within us. And this is the problem. Man thinks that he is a body. He does not have any consciousness whatsoever of the underlying divinity or the soul within him. As we have been taught by the rishis of our country, the sacred text that they have produced, man is basically a soul that has taken on a body. It is never the other way around. We say that we are a body which has a soul. This is entirely different from saying man is basically a soul and has taken on a body for a particular length of time. If that be so, then his soul or his inner divinity is his real identity. And to the extent we are disconnected from our real identity, the problem is there. It's very simple. This is the problem. So, the aim of this conference, as I was pointing out yesterday, is to remind us of this inherent, our inherent divinity, the divinity within us. How to do it? The solution. Now, as I said, life is not a bed of roses. We find different kinds of, you know, thorns on our way, which act as distractions, which detach, disconnect us from our true selves, from our inner personality. Anger, jealousy, fear, hatred, so on and so forth. Now, someone asked Buddha, the Lord Buddha, that how do we get over all these things? How much, howsoever hard we may try, we seem to be influenced by these, you know, negative traits. The Buddha smiled and in his usual manner, telltale way, he said, if there are thorns on your path, will it be wise on your part to go and pick up one by one and throw them out? Or will it be wise on your part to wear a footwear? रास्ते में अगर कांटे ही हैं, तो एक-एक करके कांटे निकालेंगे या जूते पहनेंगे? तो ये जो जूते पहनने वाली बात है, this is what is establishing your connection with your divine, with the divine divinity within you. That is what the Buddha said. And I read the Bhagavad Gita every day. I've been doing it for quite some time. Whatever little I have understood, one particular shloka bothers me. It says, Krishna says to Arjuna, advises Arjuna, Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha mayarpita manobuddhir mame vashyasya sangsaya. Therefore, at all times think upon me only and fight. With mind and understanding set on me, you will surely come to me. How is it possible? No, there is an apparent contradiction. Arjuna is the warrior on the battlefield, holding a bow and arrow. He is facing another, his enemy, who is also ready with a bow and arrow. If he puts down his weapon and thinks of the Lord, then you know what will happen. So is it what the advice is? It is, as I understand, over the years, having read it again and again, I understand it in this manner. He is not asking you to specially think of him, but to, you know, to keep the thought of divine at the back of your mind as you go on doing the chores, different activities of the world. Whatever you may do it in any manner. Yesterday, one respected sister said that while waking up in the morning, you have to have 15 minutes of meditation before sleeping, you do that. Day long, whenever you find time, if you can steal a few moments and sit down to connect with the divine, well and good, by reading the scriptures, by attending conferences like this, by coming to places like this, whatever may be the methods are many. We have been told that you have to maintain a sort of a, you know, meditative state of mind throughout the day, 24/7, a meditative state of mind. So it is not so much specifically remembering the God or chanting his name while you are working, which is not possible to do in the first place, but keeping that thought at the back of the mind. For this requires training, this requires practice, abhyasa and vairagya. Abhyasa, practice. So, another method, like I tell you, if your eyesight is wrong and if you are unable to see things clearly, if you are having blurred vision, all you have to do is to put on a spectacle. Put on the correct glasses. If you wear red glasses, everything will appear red to you. Similarly, if you put the glasses of spirituality on your inner eyes, then everything will become spiritual. That is why, again, I am reminded of another shloka. Yat karosi, yadas nasi, yajju hosi, dadasi jat, yat tapasyasi kaunteya, tat kuruswa madarpanam. Whatever you do, whatever you act, whatever you eat, whatever you do in sacrifice, giveaway, in sacrifice, whatever austerity you may practice, do it as an offering to me. Me means there is no specific person. It is not referring to any physical act of giving, but this inner connection, which we have been hearing since yesterday. So staying connected with the divine is the solution, and it is the way. What would be the result? I will give a small example and I will close. Today morning, Nathmal Bhai took me to the Pandav Bhavan and we also visited some public places of Mount Abu. At a particular place, we found the government appointed sweeper was sweeping the premises. And we could see that he was not sweeping only, he was only, waving his broom. Because we could find everything where, as it is. But you know, the scene changed when we moved to the global hospital. Is it? Your global hospital. There, some sisters were cleaning. And they were so meticulous. They were so carefully cleaning each and every inch of the hospital. That's the difference. The first person is not corrected at all. The second, he's doing it just as a, you know, करने के लिए करता है, but the other person, the sister who was cleaning, who was mopping the floor, she was connected. She took it as tat kuruswa madarpanam, as an act of offering to the Lord within. She did not be reminded of her work, but she did it. So this is how we practice spirituality, or we establish a connection in our daily lives as we go about doing our whatever, in whatever station the Lord has placed us. If we make a sincere effort, then I'm sure our lives would change for the better. And once our lives change, we can prove to be that much useful to the society. Thank you. Om Shanti.
Thank you very much, Honorable Mr. Justice Shashikant Mishra Ji. Aapne Bhagavad Gita ke श्लोक को कोट करके कैसे वो स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लाते हैं और हमें लानी है उसके बारे में आपने बताया. अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक. आपका मैं ब्रीफ में परिचय देना चाहूंगी. आपने सन 2000 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की, उसके पहले आप जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस महापात्रा के चैम्बर्स में आपने इंटर्नशिप की और आप स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको फॉर इन ओडिशा हाईकोर्ट. ही ऑल्सो एक्टेड एज रिटेन्ड काउंसिल फॉर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ही आर्ग्यूड मेनी इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस इन द हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा ओवर द ईयर. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड हिज नेम फॉर एलिवेशन टू द बेंच बाय रेजोल्यूशन डेटेड 29 सेप्टेम्बर 2021 एंड ही वॉज स्वोन एज अ जज ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा ऑन 5th नवम्बर 2021. तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप अपने ग्रीटिंग्स हमारे बीच प्रस्तुत करें. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र जी.
दैट आई विल नॉट टेक मच टाइम. माय इंट्रोडक्शन इज इट सीम्स बिगर देन माय एड्रेस. तो कुछ भाई और बहनों ने बोले थे कि हिंदी में भी बोलना चाहिए, तो कोशिश करेंगे, गलती होने से माफ कर दीजिएगा. तो जिनका आई विल स्टार्ट विथ, जिनका पैदा उत्तर में हुआ था, जिनका लीला पश्चिम में किए थे, फिर वो अपना देह त्याग करके शरीर जो त्याग किए थे, फिर उनका जो नाभि जाके लगा था पुरी में, उनका वाणी था कि मैं कलयुग में श्री जगन्नाथ रूप में पुरी में दर्शन दूंगा, वहीं आपको मैं गाइड करूंगा. वही भगवान श्री जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं. पहले नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें. सो उसके बाद में उनका जो जो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है कलयुग का, उन्हें उनका जो मुख निशुद्ध वाणी जो भगवत गीता है, जिनको आप बोल सकते हैं अगर मदर ऑफ स्पिरिचुअलिटी कोई है, इट इज द ओनली भगवत गीता, जहां से वो प्रेरणा मिलता है. जितना भी स्पिरिचुअलिटी जो भी मैं देखा हूं, आई मीन इट इज देयर इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो, दे प्रैक्टिस सम स्पिरिचुअलिटी, बी इट बाइबल कुरान गुरुवाणी और वॉट एवर, द बेसिक प्रिंसिपल इज सेम. वॉट एवर इज हैज बीन रिटन इन द भगवत गीता, द सेम हैज ऑल्सो बीन फॉलोड बाई अदर रिलीजन्स. दिस बींग द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स, सो इट इज प्रिज्यूम दैट दे आर ऑल लेटर ऑन दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाई द वर्ड्स ऑफ भगवद गीता, विच इज द मदर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी. मंचित जितने मान्यगण व्यक्तियों को मेरा नमस्कार. जितने मंच के सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों अधिवक्ताओं सबको मेरा सादर प्रणाम. सो मैं पहले शुरू करूंगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है, व्हाट द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इन द लीगल फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी एंड फॉर एथेरियल प्रोग्रेस. सो बिफोर गोइंग टू द सब्जेक्ट, वी मस्ट नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. इन कॉमन पार्लेंस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू द कॉमन परसेप्शन इज अ क्वालिटी of being concerned with human spirit or soul. जो बोले सभी वक्ताओं ने, अपने अंदर जाके अपने ही से जो संपर्क करना, एंड थ्रू दैट भगवान के साथ जो संपर्क करना, वही आध्यात्मिकता है. आध्यात्मिकता ही मूल है. सो दैट इज व्हाट इज कॉमन पार्लेंस. बट एट दिस स्टेज आई वुड कोट द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 6. ज्ञान योग में भगवान ने बोल रहे थे अर्जुन को, advise Arjun to develop a positive mindset, focus on the present moment, let go of the negative thoughts and feelings. Lord Krishna also taught that spirituality is the foremost part of the human life. So kitna bane very simply wo bataye hain, these are the three things, basic things for spirituality. Ek hai, you have to live in the present, don't think about the future, because wohi sabse bada problem hai. एक बार हम शुरू कर देते हैं भविष्य के बारे में सोचने में, बहुत सारे चिंता आ जाते हैं. सो लिव इन द प्रेजेंट, देन फोकस ऑन द पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, वन सकारात्मक चिंताधारा जो बोलते हैं वो रखना चाहिए, एंड नेगेटिविटी जो है उससे दूर हो जाना चाहिए, अपने अंदर आना नहीं चाहिए वो नेगेटिविटी. सो दैट इज हाउ यू डेवलप द स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता. उसी से ही रिफाइन होता है हम लोगों का सोल, we become a better person for the society. It's not that today maybe the subject is confined to the legal fraternity, it applies to the whole society, jo bhi any field, like doctors ho, engineers ho, those bahut sare fields hai, sabko applicable hota hai spirituality. Everybody must have spirituality. Jaise didi ne bataya ki wo jo ram ka bhavana, wo spirituality, both the divine and the demon both are there. Ki bhagwan ka mera ek complaint hai, bhagwan ka ek problem hai, wo to bol diye aham brahmasmi, सब में हूं, आप में है, मेरे में है, सब में है, लेकिन क्या करते हैं, आके सो जाते हैं, हमारे अंदर आके सो जाते हैं. तो उनको हमको जगाना पड़ता है, नहीं तो वो जब सो जाते हैं दैट लाइट गोज ऑफ, नेगेटिविटी आ जाता है, दैट डेमन टेक्स ओवर. सो हम में असुरिक प्रकृति आता है, हम जो करते हैं क्राइम करते हैं, पाप करते हैं, देन वी टर्न टू ए डेमन कर देते हैं. तो उसको वो भगवान जो दैट गुड क्वालिटी, दैट गुड विद इन अस, टू कीप दैट फ्लोइंग, हमको ये जो स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म का थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए. मे बी बाई योर कंडक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू बिकम रिलीजियस आध्यात्मिक होने से. कोई कर्म भी कर सकता है, कर्मयोग भी, दैट डिटैचमेंट यू
इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जो काम हम करते हैं उसको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक होता है नहीं, अपने कंसर्न्स के हिसाब से होता नहीं, कहीं भूल किया. सो दैट इज ऑल्सो, दैट इज हाउ ऑल्सो वी कैन इम्प्रूव अपॉन दैट. सो फॉर द लीगल फील्ड इज कंसर्न, एज यू नो ये तो तीन ब्रांच में है. एक तो लॉ मेकिंग फील्ड है, जो लॉ मेकर्स हैं उनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी ये बहुत मायने रखता है. जब लॉ बनता है आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तभी से तो वो जो आया है प्रिंसिपल्स, जो आया है आपका फंडामेंटल राइट्स का, जितना प्रिंसिपल्स एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑल्सो, ऑल दोज डॉक्ट्रिन्स जो कि मूल आधार है स्पिरिचुअलिज्म का, दे हैव टेकन नोट ऑफ ऑल दोज वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. देर आफ्टर लॉज वर मेड कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द लॉ मेकर्स वाइल एन एक्टिंग लॉज ऑल्सो. वो जो आध्यात्मिक चेतना वो भी कहीं ना कहीं इन लॉ मेकर्स का मन में आया है, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस किया है. डेफिनेटली इट हैज इन्फ्लुएंस देम, जबकि इट इज फॉर द सोसाइटी एंड दैट इज गुड ऑल्सो, दैट दे शुड दैट शुड मैन गाइड देम दैट स्पिरिचुअलिज्म. द नेक्स्ट विंग इज जजेस, वी द जजेस. सो आपको सबको पता है दैट वी आर डिलीवरिंग जस्टिस, न्याय प्रदान करते हैं. दीदी ने बोले कि हमारा और जरूरत नहीं होगा, अगर आप चेंज कर दोगे तो हम विल बी आउट ऑफ बिजनेस, हम लोगों का काम नहीं है. सो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने को इतना रिफॉर्म करो हम जैसा और कोई नहीं रहे, पूरा राम राज्य प्रतिष्ठा हो जाए, सब में राम बसे, द आइडियलिस्टिक सोसाइटी जिसमें स्पिरिचुअलिज्म का पूरा हाईएस्ट पीक पॉइंट हो, जैसे हमको अभी दिखा रहे थे आर्ट गैलरी में जो युग का परिवर्तन होता है. दिस इज जस्ट ए ट्रांजिशनल फेज, हमको खुद से अंदर से जागृत करके स्पिरिचुअली हमको आगे बढ़ना है टू द नेक्स्ट स्टेज, सत्ययुग जो आ रहा है. तो तभी सत्ययुग में कोई जज का जरूरत नहीं हो, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं. सो जजेस ऑल्सो दे फॉलो इन देयर वर्क वाइल डूइंग देयर वर्क. समटाइम्स मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं तो काम करता हूं, रात को एक दो बजे बज जाता है, आई जस्ट गेट इन्वॉल्व इन माई वर्क. कभी कभी मेरे बीवी बच्चे आके उठा के लेके जाते हैं मुझे जबरदस्ती. सो दैट्स हाउ आई गेट प्लेजर, मैंने काम में पूरा मर्जित हो जाना, डीपली एनग्रॉस इन योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग, फोकसिंग ऑन योर वर्क. दैट ऑल्सो ए काइंड ऑफ योग, कर्म योग, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग योर थॉट्स, ऑफकोर्स विथ पॉजिटिव थॉट्स. एंड सो फार जो साम दाम दंड के बारे में बताए गए थे, इट इज नॉट दैट द कॉमन पब्लिक गेट्स पनिश्ड, इट इज ऑल्सो जजेस दे गेट पनिश्ड वेन दे डू ए रॉन्ग वर्क. एंड इन स्क्रिप्चर्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इन स्क्रिप्चर्स इट इज रिटन जो कॉमन मैन के लिए जो दंड होता है ना, एक जज एक अगर मैंने कमिट करता है मिस्टेक, देन फॉर हिम इट इज 10 टाइम्स द पनिशमेंट विच इज प्रेस्क्राइब फॉर ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल वॉज वायलेटेड द लॉ, कमिटेड सम क्राइम, उसके लिए जितना है. अगर एक जज भूल करता है इंटेंशनली, ऑफकोर्स नोइंग फुली वेल, अगर वो भूल करता है ना, उसके लिए दैट पनिशमेंट विल बी 10 टाइम्स फॉर दैट जज, बिकॉज ही इज डिस्चार्जिंग ए डिवाइन ड्यूटी. सो वी आर दैट वे, वी आर कंसर्न, वी आर ऑल्सो aware of that, that the duty we are discharging is a divine duty. So it is guided by basically our conscience, that वो जो आध्यात्मिक चिंताधारा है वो भी कुछ कुछ guide करता है. Of course it is based on the law, rule of law, otherwise the society will be there will be chaos in the society. So far lawyers are concerned, उनके लिए थोड़ा मैं तो पहले दो confession करना चाहूंगा. So far आध्यात्मिकता के बारे में जो है, तो पहले मैं बताऊंगा, मैं जो बता रहा हूं आपसे बहुत कम हूं, यू आर मच अहेड, मच मच अहेड देन मी. सो इसीलिए मैं माफी चाहता हूं आप सबसे. तो आप लोग बहुत आगे हैं. सो मैं जो बताऊंगा ये सोचिएगा कि मेरा एक अपना चिंताधारा है कैसा होना चाहिए. सो दिस इज जस्ट माय फीलिंग ओवर द इयर्स व्हाट एवर आई हैव गैदर्ड. कि थोड़ा एक शॉर्ट में दो मिनट में बता दूंगा, दिस इज अनदर कन्फेशन. सो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ लॉयर. Although I belong to a family of publishers, book publishers, my father and grandfather, they were in the publishing line. So, पहले जब आया profession में, I decided no, I'll not go to that profession. So, I'll do some different profession. So, मुझे अच्छा लगा तो law में join किया. So, initially when I joined, I was getting 300 rupees in early 91, 90s. So, my pay was 300 rupees per week. मैं सोचा भैया क्या करूं इसमें, ये तो पूरा फंस गया मैं. So then I continued. I said, no, I must stick to it, because immediately the return is not going to come. So I continued with my work sincerely, dedicatedly, with all devotion. Kartavya mera karte gaya, phir dheere dheere income badhta gaya. Lekin mera jo senior tha na, mujhe wo jab when he was elevated, first in Odisha High Court, thereafter he became Chief Justice of Patna High Court. He said, never quote fees to any poor clients. I continued with that practice till I was elevated to the bench. I never, private cases mein, I never quoted price. Unless it is a corporate client, koi bada corporate house ho, ki government ka koi brief ho, they will pay their fee. So that honesty, that integrity, that professional ethic has to be maintained by each one of us, each one of the lawyers. Kyunki usi mein hi aapka, you will develop, you will grow that way. Honestly bhi grow kar sakta hai. Log, mane, they can grow by following the ethics and the honesty, by following the spiritual line also you can grow. Not necessarily ki aapko principles ke saath compromise karna pade ya ethics ke saath compromise karna pade. So with that also we can progress. It will help you as individual, your family with your livelihood and the society as a whole to have a better society which, with a spiritual awareness. So that spiritual awakening I was telling, that famous quote, yatha dushti tatha sushti, jaise hum sochenge, waisa hi humko sab dikhega. That's a principle. Then the next is, dharmo rakshati rakshata. So dharma ko, agar hum rakhenge, to dharma humko rakhega. Dharma ka matlab ye nahi ki, what it means is not religion. It is dharma means the work we are doing. I'll just give you one example. When I was a kid, my grandfather was a great Sanskrit scholar. So we are reciting every day almost 400 Sanskrit slokas. So one of the slokas I'll just recite. Makhina madhum ichhanti, jnanam ichhanti gunina, dhanam ichhanti sadhava, kilot patiba banar. So jo madhumakhi hai, uska prakruti hai, wo honey dhundega, wo uska kaam hai. Jo jnani hai, uska kaam hai, wo jo gun hai, jnan guni aadmi hai, wo sochega jnan kahan se milega, wo jayega apna jnan sangrah karega. So jo businessman hai, rich people hai, unka prakruti jo hai, unka dharma hai, business karenge, they will try to accumulate wealth, money, power unko accumulate karenge, wo uska dharma hai, wo bhi honesty se karna chahiye. Then the next class is kilot patva banor, jiska koi nahi hai, there is no focus, he is like a monkey, he will try to uproot the pole that is planted. So this is how the dharma means the work which you are doing, you do it sincerely with the righteousness, with all focus, moral values, that is also one kind of dharma and that will also protect you. That is what is dharma rakshati rakshata. And I will not take much time, I will conclude here by saying this finally, final words. Sarve jana sukhina bhavantu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani paschantu, ma kaschit dukkha bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Jagannath.
Thank you very much, Honorable Mr. Justice Aditya Kumar Mohapatra ji. We are very lucky that we are getting such new treasures and experiences from our distinguished guest. Now, I request our today's guest, Honorable Mrs. Justice Surepalli Nanda, Judge High Court of Telangana, Hyderabad, to share her words of wisdom and greetings with us. Briefly, I would like to tell you about her in brief. She hails from a renowned family and she was a meritorious student in her academics, which is also seen in her career as well. She was actively practiced for more than 28 years in High Court Judicature at Hyderabad, with all types of cases like constitutional, civil, criminal, labor, revenue, service matter, and she was specialized in area of constitutional law. She worked as panel advocate in AP State Legal Service Authority and High Court of Andhra Pradesh since 1995 to 2001. And she was appointed as a member of Andhra Pradesh High Court Legal Service Authority during 2005 and continued till March 2016. And she was appointed as High Court Judge at High Court of Telangana in 2022. Within these 2 years, she has recorded 390 judgments. And I read the news also, within a single day, she has pronounced 76 judgments. So we will hear Honorable Mrs. Justice Surepalli Nanda, Judge High Court of Telangana, Hyderabad.
Very good afternoon to one and all. Distinguished dignitaries on the dais, Justice B.D. Rathiji, Dr. B.K. Rashmiji, Justice R.K. Patnaikji, Justice Shashikanta Mishraji, Justice Aditya Kumara Mohapatraji, Rajayogini Agarwalji, Pushpa Didiji, Brijmohan Bhaiji, Nathmaiji, Shraddhaji, all the dear sisters and brothers of the esteemed institution of Brahma Kumaris sitting here and also viewing this event across the world, all the members of the legal fraternity assembled here, all the members of the Indian judiciary, the participants, guests, ladies and gentlemen, print, press, media, every member assembled here. I believe it's a divine blessing of God Almighty to be a part of this momentous occasion of participating in National Jurist Conference on Spiritual Empowerment of Legal Fraternity for Ethereal Progress in the capacity of guest of honor from Telangana High Court, organized by the esteemed Brahma Kumaris Institution. Spirituality is the guiding light which can show the right path to the entire humanity. Our country has to use both science and spirituality for world peace. We are assembled here at Gyan Sarovar, Mount Abu, this morning on this special occasion. The golden chapters of world history and the history of nations have always been based on spiritual values. World history is witness to the fact that disregarding spiritual values and adopting only the path of material progress has ultimately proved disastrous. Holistic well-being is possible only on the basis of a healthy mentality. A truly healthy person meets all three dimensions, physical, mental, and spiritual. Such individuals create a healthy society, nation, and world community. Spiritual empowerment is the real empowerment. When the followers of any religion or sect deviate from the path of spirituality, they become victims of fanaticism and suffer from unhealthy mentality. Spiritual values connect people of all religions to each other. Working with the spirit of public welfare while rising above selfishness is a special expression of inner spirituality. Doing charity for the public good is one of the most spiritual values. The forces promoting fear, terror, and war are very active in many parts of the world. In such an environment, the esteemed Brahma Kumaris Institution has provided an effective platform for the empowerment of humanity through many centers in more than 100 countries. This is an invaluable effort to strengthen universal brotherhood by promoting spiritual values. It is imperative to note that the esteemed Brahma Kumaris Institution is in fact the world's one and only largest spiritual institute run by women. In this organization, Brahma Kumaris remain in the front and their associates Brahma Kumaris work in the background. With such a unique harmony, this institution is continuously moving forward. By doing so, it has presented a unique example of spiritual progress and women empowerment to the world community. It is a matter of pride that for the past nearly 80 years, this Sanstan has been making invaluable contributions towards spiritual progress, inner transformation of personality, and revitalization of the world community. Through the spirit of service based on peace, non-violence, and love, this organization has made significant contributions in many fields like holistic education, rural development, health, women empowerment, disaster management, welfare of orphans, and environment protection. In this era of uncertainty, along with safeguarding its national interest, India is also playing the role of a promoter of peace in the world. According to its culture and tradition, our country is active in building a world order based on spirituality and morality. The present judicial system performs better with value-based approach when administering justice. There is erosion of values in all sections of the society in general, and judges play a vital role in restoring social justice. Both jurisprudence and spiritual jurisprudence, spirituality, have a common aim: the promotion of truth and justice and the reduction of crime. Value education along with the regular courses should be included in the curriculum of legal courses. Our society should give importance to value education and spiritual awareness on top priority. A spiritually qualified person is fearful in doing something wrong, and hence the judges need to imbibe spiritual values in the way they conduct themselves in their day-to-day activities. The Bhagavad Gita says, and I quote, "Seek refuge in the attitude of detachment, and you will amass the wealth of spiritual awareness. The one who is motivated only by the desire for the fruits of their action and anxious about the results is miserable indeed," I unquote. I would like to conclude by stating that God Almighty gives us power to do things we can't do alone. God Almighty gives us strength to the weary and increases the power of the weak. I conclude by thanking the organizers of this esteemed institution for giving me this blessed opportunity. I thank Sister Anjali from Hyderabad for giving me this blessed opportunity. Thank you, one and all, for the patient hearing.
Thank you very much, Honorable Mrs. Justice Suripalli Nandaji, for sharing your words of wisdom with us. Abhi main amantrit करती हूँ भ्राता संदीप अग्रवाल जी को. पिछले वर्ष जो हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के संयुक्त रूप विधान तत्वाविधान से की थी, और उसमें इस कॉन्फ्रेंस के लिए भ्राता संदीप जी को सबसे अच्छी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करने के लिए सम्मानित किया गया है. तो मैं भ्राता संदीप जी को कहूंगी कि इसके बारे में आप हमें बताएंगे, और मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे जुरिस्ट विंग की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी लता दीदी जी का आप सम्मान करेंगे.
ओम शांति. Dignitaries, divine dignitaries on the dais and off the dais. ठीक एक साल पहले का मुझे याद आ रहा है, 26th to 29th May, All India Federation of Tax Practitioners and Jurist Wing of Brahma Kumari jointly organized conference here, where more than 50-60 persons of all over India, leading tax practitioners as advocates and chartered accountant, gathered here for 3 days. Friends, All India Federation of Tax Practitioners is a body of CAs, advocates and other tax professionals at India level, main body, who have more than 15,000 members. Friends, we have organized about 50 dharmik karyakram pur India mein humne last year kiye the, jisme puri Jagannath Puri mein, Rameshwaram mein, काशी विश्वनाथ में, कई जगह, और ब्रह्मा कुमारी में कई जगह हमने प्रोग्राम्स आयोजित किए. तो हमारी जो जूरी ने, जो दिसंबर में हमारी कन्वेंशन कोलकाता में हुई, उसमें ब्रह्मा कुमारी ग्रैंड सरोवर में नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसको बेस्ट स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस का अवार्ड दिया गया. इस अवार्ड को ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरपर्सन आदरणीय पुष्पा दीदी और आदरणीय लता दीदी के बिहाफ पे मैंने वहां लिया था. मैं मेरी युगल खुशबू अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा वो डाइस पे आए, ऑन द बिहाफ ऑफ AFTP हम उनका आदरणीय पुष्पा दीदी और आदरणीय लता दीदी का सम्मान करना चाहेंगे। प्लीज कुछ फास्ट आइए, फास्ट आइए। फ्रेंड्स, ये एक सपना था कि ब्रह्मा कुमारीज माउंट ऑफ ज्ञान सरोवर में ऐसे वरिष्ठ लोगों को इकट्ठा करना मेरे लिए, और ये दोनों दीदियों के कारण संभव हो पाया। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अमोंग दीज 50% मोर देन 10-11 पीपल्स आर नाउ रेगुलर गोइंग टू सेंटर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी एंड ज्वाइनिंग मेनी कॉन्फ्रेंसेज ऑफ जुरिस्ट विंग। भाई दुपट्टा, आई रिक्वेस्ट रेस्पेक्टेड बीके ब्रजमोहन भाई जी एंड अवर टूडेज चीफ गेस्ट सर टू काइंडली गिव मोमेंटो टू दीदी। भाई साहब क्या हाथ, भाई साहब प्लीज एक बार सभी जोर से ताली से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओम शांति। अभी मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लता दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जुरिस्ट विंग हैं और पिछले 30 वर्षों से यहाँ हेडक्वार्टर्स में आप रहते हैं, और लीगल आप ब्रह्मा कुमारी के लीगल एडवाइजर हैं। इसके पहले आपने बॉम्बे में 12 ईयर्स प्रैक्टिस की थी, और आप बहुत सुचारू रूप से ये हमारे सारे नेशनल इंटरनेशनल जूरिस्ट के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उन्हें आप संभालते हैं, उसे अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आदरणीय लता दीदी जी स्पीच करेंगे और हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। ओ
शांति, ओ शांति, ओ शांति। स्पीच तो आप सभी सुन ही रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े डिग्निटरीज ने अपने वर्ड्स ऑफ विजडम्स रखे ही हैं आप सबके सामने, और टॉपिक आप सभी के सामने क्लियर हो ही गया है। तो मैं टॉपिक को ज्यादा ना क्लियर करते हुए सिर्फ मेडिटेशन कराना चाहूंगी, क्योंकि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड उससे एम्पावरमेंट कैसे होना चाहिए वो हमें अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तो आप थोड़ा सीधा होके बैठ जाएंगे, अलर्ट हो जाइए, अगर कुछ लग रहा है तो अपने आप को थोड़ा यूं स्ट्रेच कर लीजिए, क्या है? ताकि नींद से जाग के रियल स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कर सके, क्योंकि नींद में भी बहुत अच्छी शांति का अनुभव होता है। तो कहीं नींद की अनुभव को ना सोचे कि मेरा स्पिरिचुअल अनुभव है। इसीलिए हम अब अलर्ट होके आंखें खोलकर बैठेंगे, आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करते ही नींद में चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हो गया। इसलिए हम सब अलर्ट होके आंखें खोलकर बैठेंगे। मैं आपको वर्ड्स देती जाऊंगी, आप उसको विजुलाइज भी करेंगे और रियलाइज भी करेंगे। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं, मैं आत्मा हूं। यह देह मेरा वस्त्र है, आंखों द्वारा देखती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, हाथ द्वारा कर्म करती हूं, मगर मैं एक मालिक सत्ता आत्मा हूं। ये सारी कर्मेंद्रियां अब मेरे कंट्रोल में है, अब मैं इन्हें मालिक बन, राजा बन अपने हिसाब से चला सकती हूं। हे मेरे मन और बुद्धि, जो मेरे मंत्री हैं, मैं अब अपने मंत्रियों को आदेश करती हूं कि मैं थोड़ा समय के लिए इस वस्त्र से डिटैच होते हुए एक चैतन्य शक्ति आत्मा अपने आप को रियलाइज करते हुए अपने ओरिजिनल गुणों को अनुभव कर रही हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। शांति का सागर शांति धाम का रहवासी है। मैं आत्मा भी ओरिजिनली शांति धाम की रहवासी हूं। अब मैं परमात्मा के साथ मिलन मना रही हूं। ओहो, दो पॉइंट ऑफ लाइट, एक मैं और एक परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम है, उनके साथ ये मिलन हो रहा है। मुझे सुप्रीम सोल में से अनेक शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। जैसे ही मैंने कनेक्शन किया, वहां पर शक्तियों का शावर चालू हो गया और मेरे ऊपर शावर द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता और बल अंदर समाती जा रही हैं और शावर होने के कारण मेरे अंदर की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक पाप कर्म सब धुलाई हो रहे हैं। मैं आत्मा एकदम क्लीन और स्वच्छ होती जा रही हूं। वाह बाबा, कितना ना मैं आपका शुक्रिया अदा करूं जो आपने मुझे इतना स्वच्छ बनाकर मेरे अंदर सारी शक्तियों का भंडार भर दिया। मैं अपने आप में डबल लाइट महसूस कर रही हूं। लाइट के सागर मेरे अंदर डबल लाइट
अर्थात ज्ञान रूपी लाइट और हल्कापन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। मैं आत्मा इतनी हल्की हो गई हूं कि मैं उड़ रही हूं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अनुभव कराकर जीवन जीने की कला सिखा दी, किस तरह से मैं अपने आप में सारी शक्तियां भरकर पुनः अपने मन बुद्धि को आदेश करते हुए अपने वस्त्र के अंदर आकर इन शक्तियों को सारे विश्व में फैला रही हूं। प्रकृति, सृष्टि, पांचों तत्वों को मैं शुद्ध और पावन बनाते हुए सभी को सुख शांति का दान दे रही हूं। वाह बाबा वाह, आपने मुझे भरपूर करते हुए दाता भी बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका, इन सभी गुणों और शक्तियों को अपने अंदर ही समेट कर रख कर अपने कार्य क्षेत्र पर हम सब अग्रसर रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू आदरणीय लता दीदी जी। हमारे बीच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कल्पेश झवेरी जी, जो फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के थे, वो आने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। और वीडियो वाले भाई से मैं अनुरोध करूंगी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी ईश्वरिया, जज फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, वो पेट्रन जूरिस्ट विंग के हैं, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी है, तो वो रिप्ले की जाए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया।
ओम शांति। कल जो शुरू होने वाला है जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन दी तीन सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ लीगल प्रोफेशन फॉर इटरनल प्रोग्रेस, మన స్పిరిచువల్ ఎంపవర్మెంట్ జ్యూరిస్ట్కు, జడ్జెస్కు, వకీల్కు ఆర్ జస్టిస్ రిలేటెడ్ వకీల్కు సబ్కు స్పిరిచువాలిటీ బహుత్ హీ అనివార్య హై, క్యూంకి హమ్ దేఖా గయే తో స్వర్గ్ మే ఖాళీ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్ రహతా, ఈ బాడీ అప్నే హెల్త్ వెల్త్ हैप्पीनेस रहता, अपने सोने का दुनिया रहता, मगर ये मेटेरियल चीज के जो बाहरी एक भले सतो प्रदान रहता है, मगर वैसा एक दुनिया को बढ़ाने के वास्ते हमारे संविधान बोलता है, क्योंकि भारत के प्रजा ने वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन to have a sovereign secular democratic republic and to secure all citizens social economic political justice equality liberty and fraternity. पर कहां तक हुआ, कौन सा फील्ड में पूरी अपने एक शांतिपूर्वक क्राइम लेस और क्राइम फ्री सोसाइटी इस्टैब्लिश कर रहा है। माना दिन ब दिन अपने झगड़े और केसेस बढ़ते जा रहा, उस वास्ते हर जुरिस्ट को स्पिरिचुअलिटी जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि खुद भी एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना, एक सोने की दुनिया इस स्वर्ग जैसा ये दुनिया को बनाने में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जरूरी है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जरूरी है। उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, तनाव और अपने कुछ भी माना ये नई अनुभव होता है, क्योंकि आनंद, सुख, शांति, एक ब्लिसफुल जीवन केसेस करते हुए भी हम बीता सकते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई हो जो उसका चेयरपर्सन और पूरा उसका टीम को और पूरा जितने भी जजेस कहीं हाईकोर्ट से है, मेरा हमारे हाईकोर्ट में भी नंदा जी बहुत अच्छी जस्टिस है, ऐसा ओडिशा से भी है, सबको मेरे को बधाई हो, धन्यवाद, ओम शांति।
ओम शांति। अभी मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रेरणादायी उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी। आप इस जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं और दिल्ली में हमारा जो मेन सेंटर है करोल बाग उसके आप डायरेक्टर हैं और आपके अंदर बहुत से सेंटर आप उनका संचालन करती हैं। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप 1976 से आपने अपना जीवन समर्पित किया है सारे विश्व के लिए। अनेक देशों में जाकर आपने सेवाएं की हैं और अनेक नेशनल इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट आपने किया है और अनेक लोगों को लाभान्वित किया है। आप टीवी के भी अनेक चैनल से जो आध्यात्मिक चैनल से उसमें भी आप प्रवचन देते हैं और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन विमेन बाय इंडो यूरोपियन चैम्बर से मिला हुआ है। हम कतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं और मैं दीदी जी को हमें प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी जी।
ओम शांति। हार्टी वेलकम एंड ऑनर टू ऑल ऑफ यू ऑन द डायस। ब्रह्मा कुमारी इसके मोस्ट सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर ब्रिज मोहन जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के पटनायक जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, ब्रह्मा कुमारी की रिस्पेक्टेड सिस्टर दीदी सुदेश जी जॉइंट चीफ एंड डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शशिकांत मिश्रा जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदित्य कुमार मोहापात्रा जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुरे पिले नंदा जज हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद एंड अदर्स ऑल स्पीकर्स ऑन द डायस। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सभी को इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में देखकर। हो सकता है आप में से बहुत कुछ पहले भी विजिट किए हों और यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए हों और इसीलिए दोबारा आए हैं और कई पहली बार भी आए होंगे। आप सब न्याय के क्षेत्र से फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जिम्मेवारी वाला आपका प्रोफेशन है और आज के समाज की परिस्थितियों में आपकी बहुत सारी और अधिक चुनौतियां चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। उस क्षेत्र के तो आप अनुभवी हैं लेकिन इस स्पिरिचुअल क्षेत्र के स्पिरिचुअलिटी के इस जगत के अलौकिक जगत के भी आप अनुभवी बन जाएं, इसलिए आप सबको विशेष निमंत्रण दिया गया। क्यों? क्योंकि आप सब भी समझ रहे हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, समाज के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज हैं, अंदर से महसूस करते ही होंगे कि आज कैसी स्थिति बनती जा रही है इस संसार की, हमारे समाज की, जो समस्याएं कभी आपको स्वप्न में भी नहीं आई होंगी, आपकी बुद्धि में भी कभी नहीं ख्याल किया होगा, वो भी आपको फेस करनी पड़ रही है, आपको ही जजमेंट देनी पड़ती है, आपको ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसी शुभ भावना को दिल में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी ने आपको कार्य में सहजता हो जाए, आपके निर्णय सही उतरे, आपको सबकी दुआएं मिलें, समाज से समस्याएं बढ़े नहीं, घटती जाएं, और एक ऐसा समाज बन जाए जो बहुत स्वस्थ हो, हेल्दी हो, क्लीन हो, कल्चर्ड हो, मैं तो कहूंगी सुखदायी हो, शांतिमय हो। और दिल तो आपका भी यही चाहता है, और इन्हीं बातों को आप यहां पर ग्रहण कर रहे हैं। ये भी आपने कल से कुछ कुछ तो महसूस करना शुरू कर ही दिया होगा। ऐसे तो ज्यूरिसप्रूडेंस की बात तो बहुत अच्छी चलाते ही हैं, वो साइंस ऑफ लॉ है, परंतु क्या हमें जीवन में और बहुत कुछ नहीं चाहिए जिससे हमारी जीवन साइंस की सारी जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो स्टडीज हैं, चाहे प्रैक्टिकल है, चाहे रिसर्च है, लेकिन एक साइलेंस पावर कौन सी है जो स्पिरिचुअलिटी से आती है? स्पिरिचुअल प्रूडेंस क्या है? साइलेंस ऑफ सोल। स्पिरिचुअल प्रूडेंस में आप उस चीज को समझ पाएंगे, साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि वो कौन सी चीजें मिसिंग हो गई जिससे आज समाज में मानव की मानवता, अंदर की मानवता रोगग्रस्त होती जा रही है टॉप टू बॉटम। क्योंकि ये संसार, हम मनुष्यों का संसार है, अन्य सब साधन है, मनुष्यों के लिए सब कुछ है, जो कुछ भी है, और उसका मालिक एक है, ये सब कहते हैं, सब पूरा विश्व कहता है ईश्वर एक है, गॉड इज वन, उसे प्रभु अल्लाह जो भी कहे। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर्स क्या है, क्या हमें उसको रियलाइज करने की, इतना ही नहीं, क्या उसको हमें पाने का हक कैसे मिल सकता है? मांग तो रहे हैं, परंतु उस हक को लेना कैसे है? आप सब भी अपने कोर्ट में, अपने डिपार्टमेंट्स में, जहां भी हैं, किस व्यक्ति को कैसे देना है, बड़ी अच्छी आर्ट जानते हैं, फिर भी आप ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन वह सुप्रीम अथॉरिटी जिसकी हम क्रिएशन है, उनसे हमें अपने जीवन में क्या क्या लेना है, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, गॉड मेरे बारे में क्या जानता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर उसको हर समय साथ रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि वह जो कुछ भी करता है वो मेरे लिए अच्छा करता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअलिटी, जो आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन, एक अलौकिक जगत, एक अंदर की हमारी आंतरिक शक्तियां जगाती है, और जब हम अपने जीवन में, क्योंकि सुप्रीम पावर को कहा ही गया है कि वो ओशन ऑफ एवरी थिंग है, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, सभी गुणों का सागर है, तो मैं उसकी क्रिएशन हूं, वो वैल्यूज मेरे जीवन में आ जाती हैं, वो पावर्स मेरे जीवन में आ जाती हैं, तो मेरे जीवन का महत्व कितना अधिक बढ़ जाता है, एक आदर्श जीवन बन जाता है। तो समाज आदर्श बनना बहुत आसान है, कल की ही बात है, कोई देरी नहीं लगेगी उसमें। और इसी लक्ष्य को लेकर के ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतनी सेवाएं न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में दे रहा है। जिन ईश्वरीय गुणों का हम सिर्फ वर्णन करते हैं कहीं भी जाकर के, चाहे मंदिरों में, चाहे अन्य स्थानों पर, चर्चिस, गुरुद्वारों या जंगलों में, उसे मैं अपने जीवन में ला पाऊं, आत्मसात कर पाऊं, और वो भी अपने परिवार में रहते, अपने प्रोफेशन में रहते, अपनी ड्यूटीज को प्ले करते हुए, यही ही वास्तव में एक जीवन की सफलता कहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सदा स्ट्रेस फ्री और खुशनुमा जीवन जी सकेंगे। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे फाइनेंस में भी, कि हमारी रातों की नींद चली जाती है, परिवार भी देख देख करके दुखी होता है, हमारे ऊपर भी सदा बोझ बना रहता है, एक खुशी जीवन से कम होती जा रही है। तो प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत अधिक अब नहीं कहूंगी, आप स्वयं जान रहे हैं इस विषय पर आपको मॉर्निंग क्लासेस भी मिल रही है, और आगे हम अपने अति आदरणीय भाई साहब जी के अनुभवी अनमोल वचन सुनेंगे, जिनका परिचय भी आपको दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत सुंदर प्रेरणादायी उद्बोधन हमारे लिए किया, समक्ष प्रस्तुत किया, और अवश्य ही आप सभी को प्रेरणा मिली होगी। हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी एक बहुत अच्छी कुशल वक्ता तो है ही, लेकिन एक बहुत बहुत अच्छा गाइडेंस करती है हमें, एक नेतृत्व के गुण उनमें बहुत अच्छे हैं। कभी भी वो जोर से बोलना उनका देखा नहीं, बहुत मधुर आवाज में मीठी बात करती है और इतना अच्छे से गाइड करती है कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वो सर्व निर्विघ्न और सुचारू रूप से चलते हैं। अभी मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करने के लिए राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आप हमारे इस संस्था के वरिष्ठ भ्राता हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल माउंट आबू हैं। आपकी महिमा करना अर्थात सागर की जैसे महिमा है, लेकिन उसको मैं गागर में भरती हूँ। आप हेड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स के। आप ब्रह्मा कुमारीज के चीफ स्पोक्स पर्सन है। आप मेंबर अपेक्स बॉडी एंड मैनेजमेंट कमिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी, असिस्टेंट कंसर्न बॉडी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, सेक्रेटरी राज्य का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड चेयरपर्सन ऑफ पॉलिटिकल सर्विस विंग, जैसे हमारी जूरिस्ट विंग है वैसे पॉलिटिकल सर्विस विंग है। डायरेक्टर इंचार्ज दिल्ली एनसीआर जोनल सर्विसेज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। भाई साहब के गुणों की जितनी महिमा करे उतनी कम है। आप अभी सुनेंगी, आप उनको देखकर क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्र हो सकती है भाई साहब की, आप इमेजिन नहीं करेंगे। भाई साहब 90 प्लस है और आपका उमंग उत्साह युवाओं से भी ज्यादा है। युवाओं का जो तेज है, उनकी उमंग उत्साह, भागदौड़ सब कम पड़ेगी भाई साहब की उतनी है। आज भी भाई साहब 18 घंटे सेवाएं करते हैं, सुबह 3:30 बजे से पहले उठ जाते हैं और 3:30 बजे हमें मेडिटेशन करवाते हैं हॉल में आके। आप सोच भी नहीं सकते, रात को भी 11 बजे तक कारोबार करते हैं, लेकिन भाई साहब कभी भी थकते नहीं हैं। तो यही है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने अपने जीवन में जो उतारा है उसका वो प्रैक्टिकल हमें प्रमाण दे रहे हैं। और भाई साहब हमारे इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी थे, उनके सानिध्य में रहे हैं। और
जो फर्स्ट बैच चार्टर्ड अकाउंटेंट की थी 1956 की, तो उसमें आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पास किया है और ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आए थे तभी। तो मैं निवेदन करती हूँ भाई साहब को कि आप आज का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें।
ओम शांति। बहन जी, आत्मा की उम्र नहीं होती, यहां तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की उम्र होती नहीं, इसलिए ये बात जो ईयर्स की कहते हैं, अगर हम सब अपने आप को आत्मा मानने लग जाएं, तो आप कभी अपनी उम्र का ध्यान नहीं करेंगे। समय बचाने के लिए मैं मंच पर आसीन विभूतियों के इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी समझें कि मैंने आपका नाम ले लिया। मुझे बहुत खुशी है कि ये जूरिस्ट और लॉयर्स और इससे संबंधित भाई बहनों की ये कॉन्फ्रेंस है। सबसे सुप्रीम जज तो परमात्मा है, और एक प्रकार से आप आज इस धरती पर परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, तो उसके आप रिप्रेजेंटेटिव होकर के एक बहुत मुश्किल दायित्व निभा रहे हैं। मुश्किल क्यों है? क्योंकि भगवत गीता कहती है कि हर चीज अपनी सतो रजो और तमो अवस्थाओं से पास करती है, और वर्तमान समय ये दुनिया पुरानी है, तमो अवस्था में है। कहा ही जाता है कलयुग है, कलयुग में तो झूठ ही झूठ है, सच की रत्ती नहीं। कौन सा नियम है, कौन सी मर्यादा है जो आज के मानव फॉलो करते हैं? तो जब हर चीज का वायलेशन हो रहा हो, एंड ऑल वायलेशन इज वायलेंस, तो आप सोचिए ऐसी गर्म आग वाली दुनिया में न्याय देना कितना मुश्किल है। तो सचमुच आप बहुत मुबारक के पात्र हैं कि आप बहुत कठिन काम कर रहे हैं। सारा समाज में अन्याय, और उसमें एक होप रहती है लोगों को, सारे लोग जानते हैं, अगर फिर भी किसी को कहीं से कुछ ना मिले तो न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा जाता है, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ठीक है, इससे हम कन्फेस करते हैं कि हम सब अंधकार में हैं। हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, आज की स्थिति है तो हम खुद कह रहे हैं कि हम असत्य की दुनिया में हैं। और लास्ट बात हम क्या कहते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल। हमें अपने इस दुनिया की जो नुकसानकारक चीज है उसका पता भी है, वो लास्ट लाइन में है, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल। अब शायद आप लीगल प्रोफेशन वालों का ध्यान कभी इस तरफ गया हो या ना गया हो, परंतु सुदेश बहन जी ने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया, एक बात आप नोट कर लीजिए कि आपको इस दुनिया की सारी ही जो अयथार्थ है उसका सार पता है, क्योंकि हर कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं उनके पांच कारण होते हैं। ये नोट करने की बात है, जिसको हम गीता में भी पढ़ते हैं और जिसको हम वर्णन भी करते हैं, आरती भी गाते हैं, जिसकी गा गा के उस कारणों का वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो, हम सब व्यसनों से बचें और छोड़ देंगे मोह को। रोज कहते हैं, हे परमात्मा मेरे विषय विकार मिटाओ, मेरे पाप हरो, मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं। भगवद गीता भी यही कहती है। तो जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या इनके कॉम्बिनेशन से होते हैं। आप देख लीजिए, देयर विल बी नो केस आउटसाइड ऑफ दीज फाइव वाइसेस। इससे क्या पता लगता है कि सारी समाज में मूल कारण जो अन्याय का है वो ये पांच विकार है। चाहे वो इंडिविजुअल की लाइफ में ले लें, चाहे फैमिली में ले लें, समाज में ले लें, देश में ले लें, दुनिया में ले लें, तो ये पांच मूल कारण है। अच्छा, अब जब तक ये पांच मूल कारण रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कितने लॉ कमीशन बिठा लीजिए, कितनी न्याय प्रणाली को सुधारने की कोशिश कर लीजिए, पर मूल तो जाता नहीं। कोई सिनिक कहता है कि देखो, कानून बने हैं, बनते ही जा रहे हैं। यानी देर इज नो एंड, देर इज नो टाइम लिमिट के आज लिटिगेशन, ये कानून बनने बंद होंगे, बनते ही जा रहे हैं। और साथ साथ दुनिया के अंदर ये पांच विकारों के द्वारा पैदा किए हुए वायलेंस और वायलेशन भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कहता है कि बेहतर है क्या कानून बनाना बंद करो, नहीं तो मर्ज बढ़ता गया जू जू दुआ की, तो फायदा क्या हुआ। एक सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहने का भाव ये है, अब भगवान कहते हैं कि आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो और मैं आपका कष्ट देख रहा हूं। वकीलों को झूठे मुकदमे भी लेने पड़ते हैं, कोई खून करके आ जाता है, कहता है मेरा मुकदमा लो। जस्टिस डीए डिसाई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलते रहते थे, वो कहते थे कि मैं देखता हूं कि मैं जज हूं, मेरी तनख्वाह लिमिटेड है, थोड़े बहुत चपरासी आदि ऑफिस वगैरह है। एक वकील आता है बॉम्बे से, एक पेशी का 1,00,000 ले जाता है। मेरी मां ने मुझे कहा, जब मैं वकील था, कोई क्लाइंट आया, वो उसने मर्डर किया हुआ था, वो मुझे रखना चाहता था, तो मेरी मां ने कहा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी अगर तुमने इसका मुकदमा लिया, इसलिए मैं जज बना हूं। अब आप सोच सकते हैं कैसी परिस्थिति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं उनको कोई दूसरा टूल देता हूं जिसके कारण कम से कम वो न्याय करते हुए अपने आप को तो खुश रखें, अपने आप को तो बचा सके। जैसे कमल होता है वो कीचड़ में रह करके न्यारा रहता है, तो उसका नाम है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअलिटी। पहली बात क्या है कि ये जितनी पांच खतरनाक सांप हैं, इनका शास्त्रों में बहुत वर्णन है। श्री कृष्ण जी को पांच सिर वाले सांप ने फुकार मारी, वो काले हो गए। आज हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। काले का भाव क्या है? मुंह काला करना, जिसको हम क्रिमिनल असॉल्ट कहते हैं, काम विकार, इसको भगवद गीता ने सबसे बड़ा महापाप कहा। अब भगवान कहते हैं ये सारे विकार क्या शुरू से चले आते हैं? सारी बहनें कह रही हैं कि भाई हम तो, सारे लोग कह रहे हैं हम तो ऐसी दुनिया चाहते हैं, भगवान ने आखिर दुनिया रची होगी तो ऐसी थोड़ी रची होगी। तो ये विकार भगवद गीता कहती है कि काम विकार जो सबका महाशत्रु है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। अर्थात सतोगुण में वो विकार नहीं होता। मैं डिटेल में नहीं जाता, परंतु कहने का भाव ये है कि पांचों के पांचों एक दिन इनका जन्म हुआ और एक इनका मृत्यु का दिन भी है। जन्म हुआ जब मानव अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस में ले आया, अपने आप को एक धोखे में ले आया, उसने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। ये सब ने इस बात के ऊपर टच किया है कि मेरे को मैं कहना शुरू कर दिया, जो चैतन्य आत्मा है उसकी बजाय अपने आप को शरीर कहना शुरू कर दिया। जो ही शरीर माना, सारे धर्म वाले कहते हैं एडम और ईव को पैराडाइज से क्यों धक्का दिया गया, दे मेड सम ओरिजिनल सिन, और ओरिजिनल सिन यही है कि अपने को शरीर मान के, अब सोचो हैं आप आत्मा मान के आप शरीर चल रहे हैं, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो विकर्म शुरू हो गए थे, पांच विकार एंटर हो गए। अब भगवान, गीता का भगवान क्या कहता है, पहले तुम इसको रिवर्स करो, इस आइडेंटिटी क्राइसिस को रिवर्स करो कि तुम आत्मा हो, तब तुम इससे छूट सकते। नंबर वन, अच्छा ज्ञान भी किसी को मिल जाए कि भाई मैं आत्मा हूं, क्या वो उससे छूट जाएगा? क्योंकि सबने बताया कि जो पूर्व हमारे, हम दो युगों से देव मान के चलते आए हैं, उसके अंदर जो बॉडी कॉन्शियस के संस्कार हमारे अंदर रग रग में भरे हुए हैं, वो इस ज्ञान से नहीं छूटते। बहन सुदेश बहन जी ने बताया कि किस प्रकार से टेम्पटेशन हैं, लीनिंग्स हैं, वाइसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, अट्रैक्शन हैं, वो हमको बांध लेती हैं। तो सेकंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस, कि जानने के बाद भी हम आत्मस्वरूप में रहकर वो पवित्र आत्मा जो थे नहीं बन सके, क्योंकि विकार आत्मा में ही आए हैं। हम महात्मा कहते हैं, देव आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव आत्मा के साथ लगता है, आत्मा ने किया है, आत्मा ही भोगती है। अब भगवान कहते हैं तुम इतने सारे कानून बना रहे हो, वो कानून तो बेचारे केवल कचहरियों में ही है, जैसे आजकल भगवान सिर्फ मंदिरों में ही हो गया है। मैंने तो एक नियम बता दिया था, लॉ ऑफ कर्मा, ऑटोमेटिक ऑपरेशन है कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। लेकिन लोगों ने सोचा कि हम इस लॉ को तोड़ के दिखाते हैं। आज का इंसान क्या कहता है, रिश्वत लो मौज करो, ऑनेस्ट रहो भूखे मरो, ये उल्टा समझते हैं। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति को कहा जाए कि सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, वो तो यही कहेगा साहब सूर्य सुबह यहां था, दोपहर को यहां है, धरती पर तो मैं खड़ा हूं, लेकिन ज्योग्राफी क्या कहती है। इसी प्रकार से आज हर एक मनुष्य उस लॉ को तोड़ रहा है और दुखी भी हो रहा है। तो भगवान कहते हैं पहली बात, मैं अपने जूरिस्ट्स को, वकीलों को, तो ये अमृत देता हूं, इसको कहा जाता है ज्ञान अमृत। अमृत जो कहा गया, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। अमृत मीन्स इमोर्टैलिटी, अमृत मीन्स जो इमोर्टैलिटी लाए, और वो भगवान का अमृत क्या है कि बेसिकली आपने गलती की है, आप तो हो ही इमोर्टल आत्मा। भगवान क्या करेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करो कि मैं इमोर्टल सोल हूं। गीता में 10 बार रिपीट किया गया है कि आत्मा हो, शाश्वत हो, आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, और तुम वो हो, और हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान मुझे मृत्यु, मृत्यु तो शरीर का होता है, इसलिए वो अमृत पिलाकर भगवान पहले तो कहते हैं कि तुम इमोर्टल सोल हो, फिर कहते हैं अब तुम्हें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस को दूर करने के लिए एम्पावरमेंट। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट से पहले ये आइडेंटिटी चाहिए कि मैं सोल हूं, और उसके बाद उसकी एम्पावरमेंट कौन करेगा। हम सारे के सारे एक नाव में सवार हैं, हम तो सारे ही बॉडी कॉन्शियस हो चुके हैं, आत्मा के बारे में बात तो करते हैं, अब आत्मा में तो कमजोरी आ गई है, तो कमजोरी वाला कमजोरी वाले की कमजोरी कैसे दूर करेगा? एक सेब दूसरे सेब को कैसे पैदा करेगा? वो तो बीज होता है। फिर भगवान कहते हैं ये मेरा काम है। भगवत गीता को पढ़ लीजिए, भारतवासी बड़े फॉर्चुनेट हैं, यहां पर भगवत गीता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी कमजोर आत्मा को, मनोबल जिसका खत्म हो चुका है, जो अनेक प्रकार के वायलेंस वायलेशंस के कारण वीक हो चुकी है, जो चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर सकती। आजकल बहुत लोग कहते हैं हमें तो नॉलेज है, हमें पता है अच्छा क्या बुरा क्या है, आप हमें क्या सिखाओगे। नॉलेज है ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन नॉलेज का फायदा क्या? अगर मैं अच्छा कर ना सकूं और बुरे को छोड़ ना सकूं तो नॉलेज किस काम की हुई? इसलिए इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। तो भगवान कहते हैं देयर इज समथिंग अबव नॉलेज एंड दैट इज विजडम। सरस्वती वाज गॉडेस ऑफ विजडम। गीता में विजडम दी गई है, ओनली वन साइडेड आउटलुक। जैसे कोई कह रहे थे कि लाल चश्मा लगाओ तो आपको लाल ही दिखेगा, सावन के अंधे को हरा दिखता है। तो हमें भगवान कहते हैं मैं तुम्हें डिवाइन विजडम देता हूं। आत्मा को मेरे साथ जब कनेक्ट करते हो, ये सारी बहनें जो हमको बता रही हैं, ये सारे लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी के परिवारों में जो चेंज आया है वो प्योरिफिकेशन ऑफ सोल से आया है। पवित्रता जो हमारी ओरिजिनल स्टेट थी, आज हम अपने आप को पतित कहते हैं, मंदिरों में जाके देवताओं की मूर्तियों को पावन कहते हैं, तो क्या हम पतित ही रहेंगे? सदा आरती करते रहेंगे हम पतित आप पावन, मैं नीच आप देवता नहीं। तो भगवान कहते हैं मौका आ गया है, अब तमोगुण को बदलना है। जैसे सतोगुण नहीं रहा, रजोगुण नहीं रहा, तमोगुण का भी अब एंड आ गया है, उसकी सब निशानी देख रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का मैसेज यही है कि अपने आप को आत्मा समझकर फिर आत्मा की रियलाइजेशन करें। जीवन में आत्मा को रियलिटी के तौर पर लाके जिए, और उसके लिए परमात्मा से शक्ति चाहिए। भगवद गीता यही कहती है कि जो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आएगा मैं उसको सब पापों से मुक्त करूंगा। शरण में आना कोई चरण पकड़ने की बात नहीं है। धर्म सर्व धर्मों को भगवान ने क्यों कहा छोड़ो? हमारे धर्म क्या है? मैं हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुस्लिम के घर, दीज आर बॉडीली रिलीजन्स। तो ये कोई रिलीजन इन प्रैक्टिस नहीं है। सो धर्म हमारा आत्मा का शांति है, सो धर्म हमारा पवित्रता का है। तो भगवान कहते हैं वो मैं मेरे साथ योग लगाओगे तुम्हारे पिछले पाप भस्म होंगे, तो तुम्हारी आत्मा लाइट होगी, तो आप वो दैवी गुण जो देवताओं में थे, जिसके कारण हम देवता थे, आज हम सबके नाम देवताओं पर हैं। नाम तो सबके देवी देवताओं पर ही हैं, किसी का नाम त्रिलोकीनाथ है पर नकली है, रहता किराए के चुबारे में है त्रिलोकीनाथ, या किसी का नाम जगन्नाथ है, और किसी का नाम तो सीताराम है, राधेश्याम है। भाई तुम सीता तो देवी थी, राम देवता थे, तो इकट्ठा सीताराम कैसे है उसको मालूम नहीं है। इसलिए नेम हमारे हैं, एक्शन नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात है। एनीबडी कैन प्रैक्टिस दिस एंड फाइंड चेंज इन हिमसेल्फ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का पूरा सार आपने एक छोटे से वक्तव्य में आपने हमें बता दिया है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ बहनों को कि आज के हमारे मेहमान जो है उन्हें हमारे सीनियर्स भाई साहब है सुदेश दीदी, पुष्पा दीदी, हमारे स्टेज पर जो मेहमान हैं उन्हें शॉल और सौगात देंगे और टोली का वितरण करेंगे। थोड़ा ही समय बाकी है, आप सभी से अनुरोध है कृपया आप सभी यहाँ ही बैठे रहे, बस एक लास्ट कार्यक्रम बाकी है।
आपसे अनुरोध है, प्लीज यहाँ बैठे रहे। आप सभी करतल ध्वनि से मेहमानों का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी सौगात दे रहे हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। आदरणीय पुष्पा दीदी जी प्रसाद दे रहे हैं। आप सभी को कल सौगात मिल गई ना, आज आप सभी को प्रसाद मिला अभी, तो कृपया अगर उसके प्लास्टिक जो है वो आप अपने पास रखें, उसे नीचे नहीं डालें। अगर नीचे डाले हैं तो आप कृपया उठा लीजिए, बाहर डस्टबिन है वहां पर डाल दीजिए। इस कार्यक्रम के पश्चात दिल्ली से जो भी हमारे गेस्ट आए हैं दिल्ली और ओआरसी से, तो वो यहाँ ही बैठे रहेंगे। आदरणीय ब्रिजभवन भाई जी आप सभी से मिलेंगे। अभी आज के इस हमारे मेहमानों से निवेदन है, कृपया आप बैठे रहे, हमारा बस अंतिम पड़ाव पर हमारा ये कार्यक्रम है अभी, और मैं इस कार्यक्रम के आभार का भार वहन करने के लिए राज्योगी डॉक्टर बीके नथमल भाई जी नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग को सौंपती हूँ। नेशनल डॉक्टर नथमल भाई जी, आप बहुत ही कम उम्र में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और पिछले 45 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। हमारे आज के जो भी मेहमान जजेस हैं, आप ही इन्हें लाए हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से सभी विंग्स हमारे जो 20 विंग्स हैं उसमें जितने भी वीवीआईपीज होते हैं, तो काफी वीआईपीज को आप लाते हैं, उन्हें बाबा के घर तक पहुंचाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बहुत विशेष सेवाधारी रत्न है। और आप मीडिया विंग के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो ऐसे विशेषताओं से संपन्न हमारे नथमल भाई जी को आभार का भार वहन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नथमल भाई जी,
ओम शांति। अगर बोल सकते सभी बोलें ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय इस यज्ञ के जिसको कहें आधार स्तंभ ब्रह्मा बाबा के कर कमलों से पद चिन्हों पे चलते हुए परम आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी, जिनकी एक एक शब्द में पूरी गीता समाई हुई है, ऐसे महान हस्ती को पाकर के हम अत्यंत खुशी हैं, और जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में इस ज्ञान का सार बताया, ऐसे महान हमारे ब्रजमोहन भाई जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आप सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों से राता जी को हम धन्यवाद देते हैं। तत्पश्चात हमारे आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो हमारी जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं, भले ही दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि हमारी देश की राजधानी भी दिल्ली है, सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली है, तो ऐसी महान आत्मा को भी, क्योंकि ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं जूरिस्ट विंग की सेवाएं, उसके जैसे कहते हैं कि शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है तो शरीर ठीक चलता है, अगर रीढ़ की हड्डी थोड़ा ऊपर नीचे होता है एक मन का भी, त
तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारी जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन महोदया जी, हमारी आदरणीय पुष्पाजी जी को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, आभार है। हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ऑनरेबल जस्टिस आर के पटनायक जी, जिनको एक बार मिला था और उसी समय ही आपने कहा, मैं भले ही सोच के बताऊंगा लेकिन मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और आपने वही बात आज कही कि, और इतनी सरल चित आत्मा आपने देखा भी, उनको सुना भी, कि बहुत ही सरलता से अपनी बात कहते हैं और बहुत गुह्य बात कहते हैं। तो उनका भी मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप से आपने रोल अदा किया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, आभार है। और जो इस प्रांगण में हम बैठे हैं, उस प्रांगण की डायरेक्टर हमारी सुदेश दीदी जी, जो केवल इंडिया के नहीं पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर आप सेवा कर देती हैं, ऐसी हमारी अति स्नेही, अति आदरणीय, अति सम्मानीय सुदेश दीदी जी का भी बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हमारे ऑनरेबल जस्टिस शशिकांत मिश्रा जी, जिन्होंने कल भी आप सबको संबोधित किया, आज भी संबोधित किया, तो उनके तो एक एक शब्द ही बहुत ही गुह्य राज को समझाते हुए अपनी वाणी के अंदर, जैसे कि सरस्वती माँ को विद्यमान कर रखा है, ऐसी प्रतिभावान ऑनरेबल जज होकर के पूरे उड़ीसा के अंदर उनको बुलाते रहते हैं। हमारे भी संपर्क में तब से आए, हमारे कटक में भी आप आए थे, वहां कॉन्फ्रेंस रखा था, और यहां पर भी पिछली बार आने का था लेकिन नहीं आ पाए। उसी समय कहा था कि नेक्स्ट टाइम नथमल भाई मैं जरूर जाऊंगा, तो आज आपके सामने पहुंचे। हमारे शशिकांत मिश्रा जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद है। और हमारे ऑनरेबल जस्टिस आदित्य महापात्रा जी, आपको भी मैं एक ही बार मिला, आपने भी कहा कि मैं जरूर चलूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, और उसके बाद उन्होंने कहा जरूर मुझे चलना है। आपका टूर बहुत लंबा था लेकिन शॉर्टकट करके भी आप हमारे पास पहुंचे, आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। हमारी परम आदरणीय लता दीदी जी, हमारी पुष्पा दीदी की राइट हैंड होकर के इस पूरी विंग को संचालन के लिए, भले ही हम नाम के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेकिन असली काम हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप से लता दीदी कर रहे हैं, तो इनका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी परम आदरणीय रश्मि ओझा जी, लौकिक में प्रोफेसर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ कोई भी हमारा ये कार्यक्रम होता है तो उसमें आप आती हैं और अपना बहुमूल्य, तो ऐसे ही हमारी आदरणीय रश्मि ओझा जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में तेलंगाना हाईकोर्ट से भी हमारी अति स्नेही सूर्यपल्ली जी पधारे हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा अपने शब्दों के द्वारा हम सबको संबोधित किया। ऐसी हमारी मैडम सूर्यपल्ली जी को, और हमारे बीडी राठी जी, भगवान दास राठी जी, वो तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा पोस्ट पर रहते हुए फिर भी आश्रम में जाकर के क्लास करना, हाईकोर्ट में भी जब जज हुए उसके पहले डिस्ट्रिक्ट जज रहे, कोई भी पोस्ट पर रहे, ये हमारे लिए आप एग्जाम्पल हैं कि राठी साहब हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के नियमित रूप से ये स्पिरिचुअल क्लास लेते हैं और दूसरों को भी संबोधित करते हैं। तो ऐसे हमारे राठी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में ब्रजमोहन भाई जी का बताया, श्रद्धा दीदी जो सारा मंच संचालन कर रही हैं, तो ऐसी हमारी श्रद्धा बहन, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और हमारे सामने सभी उपस्थित मेहमान, और उड़ीसा से भी काफी हमारे भुवनेश्वर कटक से मेहमान आए हुए हैं, पूरे इंडिया से आए हुए हैं, तो ऐसे सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर आप ना आते तो ये कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी डायस पे बैठे वो किसको सुनाते, तो इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबका है। और उनके साथ साथ हमारी जो मीडिया, जो हमारे भाई और जो भी हमारे इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम केवल हम यहां देख नहीं रहे, पूरे ऑल इंडिया में लाइव जा रहा है, तो ऐसे हमारी मीडिया टीम, तो उनको भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन बहनों ने, बहुत छोटी छोटी बालिकाओं ने जो नृत्य स्वागत किया, कितना उनका उमंग उत्साह था, मेरा तो दिल कर रहा था मैं भी उनको साथ में नाचने लगूं, लेकिन वो परमिट नहीं था। तो ऐसे हमारी छोटी छोटी बालिकाओं ने सुंदर संगीत के द्वारा, सुंदर नृत्य के द्वारा हम सबका मन मोह लिया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे युग रतन भाई और सभी का, युग रतन भाई काफी सुंदर गीत गाते हैं, तो ऐसे सुंदर गीत गाने वाले युग रतन भाई जी का, और जो भी अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो सबको नाम सहित पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ओम शांति।
सबका धन्यवाद करने वाले नाथमल भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद, आपकी अथक सेवाएं हैं। अभी हमारा ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो रहा है, उससे पहले मैं एक दो अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे यह सेशन स्टार्ट करने के पहले एक्टिविटी कराई गई थी, ऐसे ही 4:30 बजे एक्टिविटी सेशन होगा, बहुत अच्छा रहेगा वो, तो सभी समय पर पहुंचेंगे। और यह जो प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे हैं वो अवेकनिंग टीवी पर लाइव जाते हैं, तो आप भी अपने जो घर के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उन्हें भी कह सकते हैं ये देखने के लिए अवेकनिंग टीवी पर। और अभी हम 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और उसके पश्चात भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे और 4:30 बजे ठीक इसी हॉल में पधारेंगे। और ORC और दिल्ली के कनेक्शन के जो भी भाई बहन हैं वो यहाँ ही बैठे रहेंगे। ओम शांति।